प्रभु आपको आशीष दे। आइए अब कुछ क्षण के लिए खड़े रहें, जैसा कि हम हमारे सिर को झुकाते हैं। क्या कोई विशेष विनती है? यदि आप चाहते हैं तो अपने हाथों को परमेश्वर की ओर उठाकर ज्ञात होने दें और कहें, हे परमेश्वर, आप मेरी आवश्यकता को जानते हैं। स्वर्गीय पिता, आज सुबह हम वास्तव में एक सौभाग्यशाली लोग हैं परमेश्वर के भवन में इकट्ठा होने के लिए, और हम जानते हैं कि ऐसा है, बहुत से लोग जो आज सुबह परमेश्वर के भवन में रहना चाहते हैं और वे अस्पताल में हैं और बीमारियों के बिस्तर पर हैं, और आपने हमें आज यहाँ पर होने के लिए यह सौभाग्य दिया है। और प्रभु, हम कभी भी एक दूसरे को देखने के लिए नहीं आए, भले ही हम एक दूसरे के साथ संगति करना पसंद करते हैं, लेकिन हम ऐसा हमारे घरों पर भी कर सकते थे, लेकिन हम यहाँ पर उसके साथ संगति करने के लिए आए हैं जिसने हमें प्रिय बच्चों और भाइयों के रूप में एक साथ लाया है। हम अब आपको धन्यवाद देते हैं, और यही एकमात्र तरीका है जिसे हम सही ढंग से आपके साथ संगति करने के लिए जानते हैं, जो आपके वचन के इर्द गिर्द है। आपका वचन सत्य है। हम यहाँ पर आत्मिक शक्ति के लिए इकट्ठा होते हैं। हमें इसकी आवश्यकता है प्रभु, हमारे पास यह शक्ति होना ही है, ताकि हम जो उस क्रूस को बनाए रखें जिसे हम सहन कर रहे हैं। और हम प्रार्थना करते हैं कि आप आज महान पवित्र आत्मा को भेजेंगे और हम सभी को मजबूत करेंगे। आपके लोगों की विनतियों को स्वीकार करें जैसे वे इकट्ठा हुए हैं और अपने हाथ को आपके लिए उठाया है कि उन्हें ऐसी चीजों की आवश्यकता है। प्रत्येक को उत्तर दीजिए प्रभु। हम कल रात यहाँ सड़क पर दुर्घटना में हमारी बहन अंग्रेन के जीवन को बचाने के लिए धन्यवाद देते हैं। आप उनके प्रति दयालु थे प्रभु, और हम इसके लिए आपको धन्यवाद देते हैं। और अब हम प्रार्थना करते हैं स्वर्गीय पिता कि आप हमारे साथ निरंतर रहेंगे और हमारी मदद करेंगे जैसे हम यात्रा को जारी रखते हैं। हर एक जन और हम में से प्रत्येक हमें अपनी सुदृढ़ करने वाली सामर्थ्य और यह जानने का विश्वास दे कि आपकी कभी असफल न होने वाली उपस्थिति हमारे साथ होगी। उस समय में जब हम खुद की मदद नहीं कर सकते हैं, हम जानते हैं परमेश्वर के दूत उन लोगों के चारों ओर छावनी करते हैं जो परमेश्वर से डरते हैं, और वे उसको हाथों हाथ उठा लेंगे, ऐसा न हो कि तेरे पांव में पत्थर से ठेस लगे। और अब हम प्रार्थना करते हैं कि आप हमें वचन के लिए आप आशीष देंगे और उसके जरिए से हमसे हम में बात करेंगे। यीशु मसीह के नाम में आमीन। मैं आभारी हूँ कि बाहर सूर्य की धूप और सूर्य चमक रहा है। यह आज की सुबह बहुत ही खराब सा था, और मुझे लगता है इस देश में विशेष रूप से हमारे पास बहुत ही अधिक आलसी थकाने वाला मौसम है, और सूर्य को बाहर आते हुए चमकता हुआ देखना यह बहुत अच्छा लगता है। आज वो छोटे परिवार का फिर से मिलना, मैं अपने भाइयों से मिलता हूँ और वे मेरी बहन के घर पर और शहर के आसपास के संबंधी हैं और उसके आसपास ही हैं। ब्रैनम लोगों का एक बड़ा झुंड है और वे सभी कंटकी से मिलकर यहाँ आते हैं, तो मुझे लगता है कि हमें शहर किराए पर लेना होगा। उनमें से बहुत सारे हैं, लेकिन बस कुछ लोग ही घर की ओर वापस आते हैं। हम अक्सर सभी माँ के घर में मिलते थे, और वह हमें एक प्रकार से पहले का एक साथ जोड़े रखने का वो छोटी सी डोर थी, लेकिन परमेश्वर ने जोड़े रखने की डोर को स्वर्ग में ले लिया है, और मुझे आशा है कि हम सभी वहाँ किसी दिन मिलेंगे। और अब मैंने एक दिन बताया, मैंने कहा, आप जानते हैं, मैं सोचता हूँ मैं अपने रविवार के संदेश को छोटा करके लगभग 20 मिनट का करूँगा और 30 मिनट का, और उसके बाद बीमारों के लिए प्रार्थना करूँगा। और मैंने आज सुबह के लिए सोचा, और मैंने कल रात सोचा जब बहन डाउनिंग ने मेरे लिए फोन किया और कहा कि बिली को फोन करो और कहो कि वो और बहन अग्रेसन अपने मार्ग पर थे, वे सड़क के एक ओर फिसल गए और उनकी टक्कर हो गई थी। और उस समय बिली अब भी खिड़की पर था। मैं नहीं जानता कि वो कौन सा समय था, शायद आज की सुबह, किसी समय की बात है। मैं काफी देर तक सोया हुआ था। मैंने भाई बूट की तरफ देखा, लाइट बंद थी, और मैं तब प्रार्थना करने के लिए घुटने पर आ गया, और जब मैंने प्रार्थना की तो किसी ने मुझसे कहा, सब ठीक है। तो मैंने बिल्ली से कहा, उसे बताओ सब कुछ, और मैंने कहा ठीक है। मैं आज सुबह उन्हें देखकर बहुत ही खुश हूं और वे वहां पीछे प्रभु के भवन में बैठे हुए हैं। उस रास्ते से होकर आने के बाद कुछ ऐसे लोग जो आपको बहुत प्रेम करते हैं, सुसमाचार सुनने के लिए सैकड़ों मील से आते हैं। तब मैंने सोचा एक 20 मिनट का संदेश दूं और जितना मैं धीमा करता हूं, इससे उनकी कोई संतुष्टि नहीं होगी। तब मैंने सोचा मुझे संदेश थोड़ा लंबा करना होगा। तो आज सुबह भाई अग्रसेन और उनके बेटे को गाते हुए सुना, आपकी कितनी महान कला है, वो उसके लिए कल दोपहर की तुलना में आज सुबह अधिक मतलब रखता है जो उसने किया है, क्योंकि उस स्वर के महान परमेश्वर ने उसकी बहुमूल्य प्रिय माँ और बहन को बचाया। अब आज हम प्रभु के एक महान समय की अपेक्षा कर रहे हैं और मेरे पास यहाँ दो या तीन अलग अलग विषय थे जिसे मैं देख रहा था और मैंने नहीं समझा, मैं नहीं जानता था कि मैं आज सुबह किस पर बात करूं। उनमें से एक था अपनी चिंताओं को उस पर डाल दो क्योंकि वह आपकी चिंता करता है। अब यदि वह चिंता करता है तो आप क्यों नहीं करते? तो उसके बाद एक और विषय, बिली पॉल नहीं, मेरे दूसरे बेटे जोसेफ ने मुझे इस विषय को बहुत समय पहले लाकर दिया था। वो एक दिन कमरे में बैठा हुआ था और उसने कहा, वो तस्वीर की तरफ देख रहा है और बिली या जोसेफ छोटे लड़कों की तरह नाव का बहुत ही शौकीन रखता है, नाव और घोड़ों का आप जानते हैं। और उसने मुझसे कहा, पिताजी क्या यीशु के पास नाव थी? और मैंने कहा, मैं नहीं जानता। तो फिर उसके उठकर चले जाने के बाद मैं सोचने लगा, क्या उसके पास नाव थी? और मैंने उसमें से एक विषय को लिया और बस इसे मेरी किताब पर चिन्हित कर दिया, क्या यीशु के पास नाव थी? और मैं सोचने लगा था, जब वो धरती पर था तो उसे जन्म लेने के लिए एक गर्भ को उधार लेना पड़ा था, दफनाने के लिए एक कब्र को उधार लेना पड़ा, एक नाव को प्रचार करने के लिए उधार लेना पड़ा। लेकिन वो सियोन के पुराने जहाज का पायलट था, निश्चय रूप से वो था। लेकिन उन विषयों पर जिन्हें मैं सोच रहा था कि मैं उन्हें बाद में ले सकता हूँ, इससे पहले हम वापस जाने के लिए वहाँ से निकले। आप जानते हैं मैं यहाँ इस भवन में प्रचार करना पसंद करता हूँ क्योंकि यह हमारी अपनी कलीसिया है। हम कुछ भी कहने की स्वतंत्रता को महसूस करते हैं जो पवित्र आत्मा कहता है। अन्य स्थानों पर भले ही लोग आपका स्वागत करना चाहते हैं, फिर भी आप थोड़ा तनाव महसूस करते हैं क्योंकि आप किसी और के कलीसिया में हैं और आप इतना सज्जन बने रहना चाहते हैं ताकि उनके विचारों और उनके सिद्धांतों का सम्मान करें। इस सप्ताह भाई भूषण के स्थान पर एक बहुत ही अच्छा समय था, क्या आप वहाँ मौजूद हैं? और मैं कारखाने में गया जहाँ वे पनीर बनाते हैं। मैं देखता हूँ वो और उसकी पत्नी और बेटे आज सुबह उपस्थित हैं और हमेशा ही सोचता था कि एक पनीर कारखाना अन्य स्थानों की तरह उस तरह का मैला और गंदा होगा जहाँ मैं गया हूँ। वह अब तक की सबसे साफ जगह थी जहाँ मैं गया हूँ और विशेष रूप से एक कारखाने में वह अब तक की सबसे साफ जगह थी जहाँ मैं गया हूँ और विशेष रूप से एक कारखाने में और मैं नहीं समझा, मैंने सोचा ओह शायद वे एक दिन में 100 पाउंड पनीर बनाते होंगे और वे प्रत्येक दिन में 6 टन पनीर बनाते हैं और 3 कारखानों को चला रहे हैं। मैंने सोचा ओह प्रभु इन सारे पनीर को कौन खाता है, परंतु प्रभु ने इस व्यक्ति को आशीषित किया है। मुझे उसके घर में रहने का सौभाग्य मिला था, एक बहुत ही प्यारा सा घर, एक भली समर्पित पत्नी और ऐसा कोई कारण नहीं है कि क्यों उन्हें हर दिन मसीह के लिए जीना चाहिए जैसा कि वे कर रहे हैं। उनके बेटों से मुलाकात की और वे बहुत ही भले बच्चे हैं। हम इस संगति के लिए बहुत ही आभारी हैं जो हमारे पास एक दूसरे के साथ है। मालूम पड़ा कि उनके पूर्व पास्टर जो एक व्यक्ति थे जिन्हें मैं जानता हूँ, भाई गुरली, संयुक्त पेंटिकॉस्टल विश्वास के एक बहुत ही भले मनुष्य थे जिनसे मैंने कई वर्षों पहले जोन्सबोरो आर्कसांस में मुलाकात की थी और मैंने जानता था कि वे, हालांकि वे उनके पास्टर थे। अब शाम की सभाओं को याद रखें और उसके बाद प्रभु ने चाहा तो अगले रविवार फिर से हम प्रचार करने की आशा करते हैं और फिर मैं सोचता हूं कि उसके अगले रविवार को मुझे शिकागो जाना है, तब मुझे कुछ समय के लिए जाना होगा, मुझे परिवार को वापस घर लेकर जाना है वापस एरिजोना की ओर ताकि वे मेरे बच्चे फिर से स्कूल में दाखिला को ले सकें। और तब हम पास्टर की सभाओं को लेते हुए उन्हें तंग कर रहे हैं, इसलिए सो हम भाई नेविल के अतिथि सत्कार के लिए बहुत ही आभारी हैं। आप जानते हैं वे मुझे आमंत्रित करते हैं और बहुत ही नहीं, मैं भाई को पसंद करता हूँ, एक ऐसा व्यक्ति जिसमें कोई कपट नहीं है, कोई स्वार्थपन नहीं है, यही तो वास्तविक मसीहत है, मैं ये पसंद करता
हूँ।
अब हम कुछ वचन को पढ़ेंगे और उसके लिए समालोचनाओं को करेंगे। मैं नहीं जानता कि इन लंबे संदेशों पर कितना समय निकल जाएगा, लेकिन मैं सोचता हूँ, मैं एक दिन लंबे समय के लिए प्रचार करने के बारे में बात कर रहा था और किसी ने कहा ठीक है, अब क्या आप बस कुछ मिनट के लिए बोलेंगे, जो कुछ भी आपने बोला है, और आप एक प्रकार से रहस्य में बात करते हैं। उसने कहा हम इसे कभी भी नहीं समझ सकेंगे, कहा केवल बोलते रहते हैं और थोड़ी देर के बाद यह बाहर आता है। उसने कहा इसलिए हो सकता है प्रभु चाहता है कि हम इसे इस तरह से करें। आइए अब सिरों को झुकाएं। प्रभु आपका वचन पुलपिट पर खुला हुआ रखा है और ये जानते हुए कि किसी दिन यह आखिरी बार बंद हो जाएगा, तब वचन देहदारी हो जाएगा और फिर हम आज सुबह इस समय के लिए आभारी हैं और हमारे लिए पवित्र आत्मा के द्वारा इस वचन का विषय खुल जाए जिसे हम पढ़ने जा रहे हैं। होने पाए पवित्र आत्मा आज हमें उन बातों को सिखाए जिन्हें हमें जानना चाहिए और फिर हम बदले में हर वचन को ध्यान से सुन सकें, इसे गहराई से विचार करें और फिर बाद में जो लोग इसे टेप के जरिए से सुन रहे हैं वे ध्यान से सुन सकें और होने पाए हम पकड़ सकें कि पवित्र आत्मा हमारे लिए क्या प्रकट करने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि हम महसूस करते हैं यदि वो हमें अभिषेक करता है तो अभिषेक व्यर्थ नहीं जाता है, यह एक उद्देश्य के लिए होता है जिससे कि यह परमेश्वर के लिए भला काम कर सके। और होने पाए हमारे हृदय और समझ खुल जाए प्रभु, होने पाए हमें बोलने की स्वतंत्रता है और सुनने की स्वतंत्रता है और विश्वास के लिए पहुँचे ताकि जो हमने सुना है उस पर भरोसा करें, जैसा कि यह परमेश्वर के वचन से आता है, जिससे हमारे लिए इसे अनंत जीवन के लिए गिना जा सके उस महान दिन में जो आने वाला है। आज हमें आशीष दीजिए, जब हम गलत होते हैं तो हमें दोषी ठहराए, हमारे दोषों को जाने जो हम में हैं और हमें उस तरह से आशीष दे जो सही है, ताकि हम जान सके कि किस तरह से जाना है और इस वर्तमान संसार में कैसे व्यवहार करना है, जिससे हम आदर को ला सकें हमारे यहाँ रहते हुए यीशु मसीह के लिए जो हमें इसके बाद महान जीवन देने के लिए मर गया। हम इसे यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। अब आज सुबह मैं वचनों में केवल दो स्थानों में से पढ़ना चाहता हूँ और उनमें से एक अब निर्गमन की किताब में मिलता है। स्पष्ट रूप से वे दोनों ही निर्गमन की किताब से हैं। एक 13वां अध्याय और 21वां और 22वां पद है और अगला है 14वां अध्याय 10वां 11वां और 12वां पद। अब मैं निर्गमन 13:21 से पढ़ूंगा। और यहोवा उन्हें दिन को मार्ग दिखाने के लिए मेघ के खंभे में और रात को उजाला देने के लिए आग के खंभे में होकर उनके आगे आगे चला करता था, जिससे वे रात और दिन दोनों में चल सकें। उसने न तो बादल के खंभे को दिन में और न आग के खंभे को रात में लोगों के आगे से हटाया। अब निर्गमन 14:10 पद में, अब फिरौन निकट आया तब इज़राइलियों ने आंखें उठाकर क्या देखा कि मिस्री हमारा पीछा किए चले आ रहे हैं, और इज़राइली अत्यंत डर गए और चिल्लाकर यहोवा की दुहाई दी और वे मूसा से कहने लगे क्या मुझे क्षमा करें, और वे मूसा से कहने लगे क्या मिस्र में कब्रें न थी जो तू हमको वहाँ से मरने के लिए जंगल में लेकर आया है, तूने हमसे ये क्या किया कि हमको मिस्र से निकाल लाया, क्या हम तुझसे मिस्र में यही बात न कहते रहे कि हमें रहने दे कि हम मिस्रियों की सेवा करें, हमारे लिए जंगल में मरने से मिस्रियों की सेवा करनी अच्छी थी। मैं कुछ और पदों को पढ़ूंगा। और मूसा ने लोगों से कहा, डरो मत। अब यहाँ ध्यान देना, मूसा ने लोगों से कहा, डरो मत, खड़े रहो और प्रभु के उद्धार के काम को देखो, जो यहोवा आज तुम्हारे लिए करेगा। क्योंकि जिन मिस्रियों को तुम आज देखते हो, उनको फिर कभी न देखोगे। यहोवा आप ही तुम्हारे लिए लड़ेगा, इसलिए तुम चुपचाप रहो। तब यहोवा ने मूसा से कहा, तू क्यों मेरी दुहाई दे रहा है? इस्राएलियों को आज्ञा दे कि यहाँ से कूच करे। और तू अपनी लाठी उठाकर अपना हाथ समुद्र के ऊपर बढ़ा और वह दो भाग हो जाएगा। तब इसराइली समुद्र के बीच होकर स्थल ही स्थल पर चले जाएंगे। और सुन, मैं आप मिस्रियों के मन को कठोर करता हूँ और वे उनका पीछा करके समुद्र में घुस पड़ेंगे। तब फिरौन और उसकी सेना और रथों और सवारों के द्वारा मेरी महिमा होगी। तब मिस्री जान लेंगे कि मैं यहोवा हूँ। और जब फिरौन और उसके रथों और सवारों के द्वारा मेरी महिमा होगी, तब परमेश्वर का दूत जो इजरायली सेना के आगे आगे चला करता था जाकर उनके पीछे हो गया, और बादल का खंभा उनके आगे से हटकर उनके पीछे जा ठहरा। इस प्रकार वह मिस्रियों की सेना और इजरायलियों की सेना के बीच में आ गया, और बादल और अंधकार तो हुआ, तो भी उससे रात को उन्हें प्रकाश मिलता रहा, और वे रात भर एक दूसरे के पास न आए। और मूसा ने अपना हाथ समुद्र के ऊपर बढ़ाया, और यहोवा ने रात भर प्रचंड पुरवाई चलाई और समुद्र को दो भाग करके जल ऐसा हटा दिया जिससे कि वे उसके बीच सूखी भूमि हो गई। और इसराइली समुद्र के बीच स्थल ही स्थल पर होकर चले, और जल उनकी दाहिनी और बाईं ओर दीवार का काम देता था। तब मिस्री उनका पीछा किए हुए समुद्र के बीच में चले गए, अर्थात फिरौन के सब घोड़े, रथ और सवार। और रात के पिछले पहर में यहोवा ने बादल और आग के खंभे में से मिस्रियों की सेना पर दृष्टि करके उन्हें घबरा दिया, और उसने उनके रथों के पहियों को निकाल डाला जिससे उनका चलना कठिन हो गया। तब मिस्री आपस में कहने लगे, आओ हम इसराइलियों के सामने से भागे, क्योंकि यहोवा उनकी ओर से मिस्रियों के विरुद्ध युद्ध कर रहा है। प्रभु का वचन बहुत ही महान है, बहुत ही अच्छा है, इसे पढ़ने से रोकने का कोई तरीका नहीं है। यह तो बस जीवन बन जाता है जब हम इसे पढ़ते हैं। मैं सोचता हूँ इस सुबह इस विषय में, हालांकि इसे टेप किया जा रहा है, मैं इसे आरंभ में कहना चाहता हूँ, इसे देखता हूँ तो मैं खुद को देखता हूँ। और इसका कारण है कि कल मैं अध्ययन करते समय मैं इस विषय पर आया, और फिर मैंने सोचा, मैं बस जाकर यदि प्रभु की इच्छा है कि इस बात पर प्रचार करूं, क्योंकि यह मेरे हृदय के अंदर चला जाता है। और मैं आशा करता हूं कि यह अब हम सबके हृदय में चला जाएगा, जिससे कि हम देख सकें और हमारे लिए ऊपर देखने का कारण बन सके, और थोड़ा सा कुछ अध्ययन को करने के लिए उस दिन के समय की तुलना करते हुए उस दिन के निमित्त जो अब है। मैं एक विषय के लिए तीन शब्द लेना चाहता हूं, और वो है, दुहाई क्यों देता है? बोल। परमेश्वर ने मूसा से कहा, यहाँ 15 पद में, तू मेरे निमित्त दुहाई क्यों देता है? लोगों से बोल कि वे आगे बढ़े। और दुहाई क्यों देता है? बोल। अब हमारे पास पूर्ण रूप से एक विषय है, और मैं जितनी जल्दी हो सके जल्दी से जल्दी करने की कोशिश करूंगा जैसे पवित्र आत्मा अगुवाई करता है। और मैं इस विषय के बारे में विचार करना चाहता हूं, मुसीबत के समय में मूसा परमेश्वर के लिए दुहाई दे रहा है और परमेश्वर मूसा को वापस फटकार देता है, ठीक उसी समय जब सत्र में परेशानी थी। और यह तो केवल सभा होता है जैसे दिखाई दे रहा था, एक व्यक्ति का चिल्ला उठना और तब क्या ही फटकार थी ये परमेश्वर का मुड़कर और उसे ऐसा कहने के लिए उसे फटकार देना, उसके लिए दुहाई को देने पर ये ऐसा दिखाई देता था कि यह एक बहुत मुश्किल बात है। बहुत सी बार जब हम अपने खुद के तरीके से वचनों को देखते हैं तो यह बहुत ही मुश्किल दिखाई देता है, लेकिन यदि हम इसे थोड़ी देर तक अध्ययन करते रहते हैं तो हम पाते हैं कि स्वर्ग ज्ञानी परमेश्वर जानता है कि वह क्या कर रहा है और वह जानता है कि इन चीजों को कैसे करना है और मनुष्य से कैसे व्यवहार करना है। वह जानता है कि उस मनुष्य में क्या है, वह उसे जानता है। हम नहीं जानते, हम तो केवल बौद्धिक पहलू से जानते हैं। वह जानता है कि उस मनुष्य के अंदर वास्तव में क्या है। मूसा ने इस संसार में जन्म लिया था और एक प्रतिभाशाली लड़का था। उसने एक भविष्यवक्ता, एक छुड़ाने वाला होने के लिए जन्म लिया था। उसने उस साजो सामान तैयारी के साथ जन्म लिया था जो उसके अंदर जन्मे थे, क्योंकि संसार में आने वाले जैसे हरेक व्यक्ति इस साजो सामान उस तैयारी के साथ जन्म लेता है। क्योंकि मैं दृढ़ता से परमेश्वर के पूर्व ज्ञान में विश्वास करता हूँ, पहले से ठहराया जाना। ऐसा नहीं है कि परमेश्वर चाहता है कि कोई नाश हो जाए लेकिन सब पश्चाताप के लिए आ सके, लेकिन परमेश्वर होने के नाते उसे जानना था और वो करता है, शुरुआत से लेकर अंत जानता है, समझे। यदि वह नहीं जानता है तब वह अनंत नहीं है, और यदि वह अनंत नहीं है तब वह परमेश्वर नहीं है। इसलिए वो नहीं चाहता था निश्चित रूप से कि कोई नाश होना चाहिए, लेकिन वह जानता है कि कौन नाश होगा और कौन नाश नहीं होगा। यही कारण है इसी उद्देश्य के लिए यीशु धरती पर आया, और वह उन लोगों को बचाने के लिए था जो परमेश्वर ने अपने पूरे ज्ञान में से होते हुए देखा था, जो बचना चाहते थे। देखा, क्योंकि सारा संसार दोषी ठहराया गया था। और मैं नहीं देखता कि हम इसे किसी और तरीके से सिखा सकते हैं परमेश्वर के पूर्व ज्ञान के अलावा। और बाइबल स्पष्ट रूप से कहता है कि वह शुरुआत से लेकर अंत को जानता है और इसे बता सकता है। इसलिए जब एक व्यक्ति कुछ ऐसा बनने की कोशिश करता है जो वे है ही नहीं, वे केवल एक नकल को कर रहे हैं, और वो बहुत ही जल्द या कुछ समय बाद आपको पता चल जाएगा। आपके पाप आपको प्रकट हो जाते हैं, आप उन्हें ढांप नहीं सकते हैं। वहाँ केवल पाप के लिए एक ही ढापा जाना है, यह यीशु मसीह का लहू है, और इसे तब तक नहीं लगाया जा सकता जब तक कि परमेश्वर ने आपको जगत की नींव डालने से पहले नहीं बुलाया हो। यही कारण है कि लहू को बहाया गया था, न ही इसे रौंदने के लिए और मजाक उड़ाएं और व्यवसाय करें और इसके लिए बुरा बोले और इत्यादि। यह तो एक सीधे सीधे उद्देश्य के लिए था, ये सही है, न ही इसके साथ खेला जाना चाहिए, न ही ढोंग करने के लिए ऐसा कहकर कि पापों को ढापा गया है जबकि वो ढाके नहीं गए हैं। और कोई भी व्यक्ति अपने पापों को ढाप नहीं सकता है जब तक उसका नाम जगत की नींव डालने से पहले मेमने की पुस्तक की किताब पर न रखा गया हो। यीशु ने खुद कहा, कोई भी मेरे पास नहीं आ सकता है जब तक मेरा पिता उसे ना खींच लाए, और वे सारे जो पिता के पास थे भूतकाल मुझे दिया है वे ही मेरे पास आएंगे। यह सही है, तो आप वचनों को झुठला नहीं सकते हैं, ये सत्य के लिए हैं और सुधार के लिए हैं। और मूसा का जन्म विश्वास के दान से हुआ था, जो महान विश्वास मूसा के पास था। हम इसे थोड़ी देर बाद देखते हैं जो उसके अंदर से आ रहा है, और वो एक महान परिवार से जन्मा था, जैसे हम उसके पिता और उसकी माँ को जानते हैं, और वे लेवी के परिवार से आए थे। ये इससे पहले या निर्गमन की किताब में जिसकी कहानी है, जो बहुत ही सुंदर तरीके से इस महान चरित्र का जीवन बताती है, और वह बाइबल के सबसे महान चरित्रों में से एक था, क्योंकि वह पूरी तरह से प्रभु यीशु का एक प्रकार था। उसका जन्म हुआ बहुत ही अजीब घराने में था, प्रभु यीशु की तरह। उसने प्रभु यीशु की तरह सताए जाने के समय जन्म लिया था। उसने प्रभु यीशु की तरह एक छुड़ाए जाने वाला होने के लिए जन्म लिया था। वह दुश्मन से दूर अपने माता पिता के द्वारा छुपाया गया था, प्रभु यीशु की तरह। और वो प्रभु यीशु की तरह सेवकाई के समय पर आया, वह प्रभु यीशु की तरह एक अगुवा था, वह प्रभु यीशु की तरह एक भविष्यवक्ता था, और वह प्रभु यीशु की तरह एक व्यवस्था को देने वाला था। और हम पाते हैं कि वह चट्टान पर मर गया और वह निश्चय ही फिर से जी उठा होगा और आदि आदि, क्योंकि 800 साल के बाद वह प्रभु यीशु से रूपांतर पर्वत पर बात कर रहा था। देखा, दूत उसे उठाकर लेकर गए थे, कोई नहीं जानता उसे कहाँ दफनाया गया, यहाँ तक कि शैतान भी नहीं जानता था। खुले रूप से मैं नहीं जानता कि उसे कभी दफनाया गया था। मेरा मानना है कि परमेश्वर उसे दूर वहाँ से उठाकर लेकर गया और वह उस चट्टान पर मरा जिसका उसने अपने जीवन के सभी दिनों में अनुकरण किया था, और वह मसीह का एक सिद्ध नमूना था। उन लोगों के ऊपर राजा था, वह एक व्यवस्था को देने वाला था, वह एक लोगों के लिए सहारा था, वह सब कुछ था एक प्रकार से जो मसीह था। अब उसके बाद देखिए कि उसने इस महान दानों और गुणों के साथ जन्म लिया था जो उसके भीतर थे। उसके बाद इसे केवल कुछ तो लेना है ताकि इसके सामने कुछ तो चमके उस चीज को जीवन में लाने के लिए। देखो, परमेश्वर का बीज असल में जगत की नींव से हमारे अंदर रखा गया है, और जब वह उजाला पहले उस बीज पर चमकता है, यह इसे जीवन में लेकर आता है। लेकिन उजाले को पहले बीज पर आना है, जैसे मैंने कुएं पर उस छोटी स्त्री के लिए कई बार सिखाया है, उसे उस स्थिति में, हालांकि वो एक कुख्यात किस्म की स्त्री थी, हालांकि उसका जीवन बदनाम हो गया था, और वो उस स्थिति में थी क्योंकि उस परंपराओं ने उसे कभी नहीं छुआ था। लेकिन जब वो उजाला पहली बार उस पर चमका, उसने तुरंत ही इसे पहचान लिया, क्योंकि इसका उत्तर देने के लिए वहाँ पर कुछ तो था। जब गहराई गहराई को पुकारती है, वहाँ उस पुकार का उत्तर देने के लिए कहीं गहराई को होना ही है। और यहाँ मूसा इस भविष्यवक्ता का जन्म हुआ था, लेकिन वो एक बौद्धिक विद्यालय और फिरौन के महल में पला बड़ा था। फिरौन सेती जिसके नीचे वो पला बड़ा था, वह एक व्यक्ति था जिसने फिर भी सम्मान किया था और विश्वास किया था कि यूसुफ प्रभु का भविष्यवक्ता है। लेकिन सेती के बाद रामासेस आया, और रामासेस ने यूसुफ के बारे में परवाह नहीं की, और सो इसलिए जब संकट आरंभ हुआ, अब जब वहाँ एक फिरौन बड़ा हुआ जो यूसुफ को नहीं जानता था। लेकिन ये महान गुण, आइए हम थोड़ी देर के लिए इनके बारे में बात करें, और इससे पहले कि हम विषय के मुख्य भाग की ओर आएं, मेरे पास विषय को रखने का एक अलग ही तरीका है, उसके बाद इस बात को रखने के लिए, और जब हम इसे बनाते हैं तो आज सुबह परमेश्वर हमारी सहायता करे। मूसा विश्वास के इस महान उपहार के साथ पैदा हुआ, फिर वह परमेश्वर के लोगों को देने के लिए जलती हुई झाड़ी में अभिषेकित और अधिकारी किया गया था। अब देखते हैं कि इस व्यक्ति के पास कितने महान गुण थे। उसने एक विशेष बात के लिए जन्म लिया था, परमेश्वर का इसमें एक उद्देश्य था। आपका यहाँ पर होने के लिए परमेश्वर का एक उद्देश्य था, समझे? यदि आप कर सकते हैं तो आप उस स्थान पर आ जाएं जहाँ परमेश्वर को और आपको भी परेशानी न उठानी पड़े। मूसा जन्म लेता है, और उसके बाद उसे फिर उस स्थान पर लाया गया जहाँ उसका अभिषेक किया गया था, और ध्यान ने वो बीज वहाँ मानसिक विचारधारा के साथ रखा हुआ था, उस पूरे विश्वास के साथ कि वह इन लोगों को छुटकारा देने के लिए जन्मा था। और फिर यह तब तक उस जीवन में नहीं आया जब तक उस जलती हुई झाड़ी में से वो उजाला इस पर नहीं चमक उठा, जब तक उसने देख नहीं लिया, ऐसा नहीं जो उसने इसके बारे में पढ़ा था, लेकिन उसने अपनी आंखों से देख नहीं लिया कुछ तो जो उससे बात करता था, और उसने उससे वापस बात की थी। ओह, वो किस तरह उन चीजों को जीवन में लेकर आया। मैं सोचता हूँ कि कोई भी पुरुष या महिला, लड़का या लड़की, और मैं सोचता हूँ कि मानसिक विचारधारा में वे जो उसके वचन और इत्यादि के लिए सोचते हैं, कभी भी पूर्ण रूप से नींव को खड़ा नहीं किया जा सकता है जब तक कि वे उस उजाले से मुलाकात नहीं कर लेते जो उस वचन को वास्तविकता में लेकर आती है। मैं सोचता हूँ इसे कार्य में लाने के लिए कोई कलीसिया नहीं है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि यह कितना भी बौद्धिक और रूढ़िवादी हो सकता है, वो कलीसिया तब तक नहीं बढ़ सकती जब तक कि वो अलौकिक उन लोगों के बीच ज्ञात न हो जाए और वे इसे देख न लें। कुछ ऐसा जिससे वे बात कर सकते हैं, वह उनसे वापस बात करे जो इस लिखित वचन को प्रमाणित करता है। अब याद रखे, जब मूसा इस जलती हुई झाड़ी से मिला, वो वचन पूरी तरह से प्रमाणित हुआ था। ये वो वचन था। मूसा को चिंता करने की आवश्यकता नहीं थी, यह सब आवाज के विषय में क्या है या यहाँ पर क्या है, क्योंकि उत्पत्ति में परमेश्वर ने वचन में पहले से ही लिखा था कि तेरे लोग इस परदेशी देश में डेरा डाले रहेंगे, लेकिन उन्हें 400 वर्ष के बाद इस देश में वापस लाया जाएगा, क्योंकि अमोरियों का अन्याय अभी तक पूरा नहीं हुआ था। अब सैकड़ों और सैकड़ों वर्ष पहले परमेश्वर ने कहा था, इज़राइल एक परदेशी देश में रहेगा और उसका दुर्व्यवहार होगा और वहाँ 400 वर्ष तक डेरा डाले रहेगा, लेकिन परमेश्वर एक शक्तिशाली हाथ से उन्हें बाहर निकालेगा। सो आप देखते हैं, इस जलती हुई झाड़ी के साथ मूसा ने बौद्धिक रूप से इसे जान लिया और वो बीज जो उसने जन्मा था वो उसके हृदय में रखा हुआ था, और उसने कोशिश की वचन के साथ अपने बौद्धिक ज्ञान के अनुभव के द्वारा वो उन्हें बाहर लाने की कोशिश करता है ताकि उन्हें छुड़ाए, क्योंकि वो जानता था कि वो उस उद्देश्य के लिए जन्मा था। वो जानता था कि यह वो समय है, वचन सब बताता है कि वे वहाँ पर पहले से ही 400 वर्ष से लेकर रह चुके थे। जैसा कि हम अब जानते हैं, जैसे एक व्यक्ति ने मुझसे कुछ क्षण पहले उसके आगमन और रैप्चर के बारे में पूछा, हम जानते हैं हम समय के समाप्ति होने पर रह रहे हैं। रैप्चर का समय नजदीक है और हम एक रैप्चर के विश्वास के लिए देख रहे हैं जो कलीसिया को खींच सकता है एक साथ और इसे कुछ तो अलौकिक ताकत को दे सकता है जो कि इन देहों को बदल सकते हैं जिसमें हम रहते हैं। जब हम एक परमेश्वर को देखते हैं जो मरे हुओं को जिलाकर जमीन से या एक गज बाहर निकाल सकता है और उसे फिर वापस जीवन में ला सकता है और उसे हमारे सामने उपस्थित कर सकता है। जब हम एक ऐसे परमेश्वर को देखते हैं जो एक कैंसर को ले सकता है, जो एक मनुष्य की छाया तक खा जाता है और उसे वापस एक मजबूत स्वस्थ व्यक्ति की नाई जिलाता है, यही लोगों के लिए रैप्चर का विश्वास देना चाहिए कि जब वो उजियाला आसमान से चमकता है और तुरही बजने लगती है तो मसीह की देह जल्द से एक साथ इकट्ठा हो जाएगी और पल भर में बदल जाएगी और स्वर्ग में उठा ली जाएगी। हाँ, ऐसा ही कुछ तो घटित होने जा रहा है और हमारे धर्म शास्त्र के विद्यालय कभी भी इसे उत्पन्न नहीं कर सकते हैं, भले ही वे बौद्धिक रूप से सही हैं, लेकिन आपको उस उजाले से मुलाकात करना होगा, आपको कुछ तो पाना है। और यहाँ मूसा वचन पर अपनी महान बुलावट को आधारित कर रहा है और ये महान बुलावट थी, जब तक वो एक दिन इस उजाले से मुलाकात नहीं करता और उसी वचन ने स्वयं वापस उससे बात की, तब उसे उसका अभिषेक मिल जाता है, वो अभिषेकित जो उसमें था, जो उसके अंदर था, वो बुद्धिमता जिसने इसे विश्वास किया, वो विश्वास जो परमेश्वर में उसके विश्वास पर आधारित था जिसने उसे अपनी माँ से अलग कर दिया। और अब जब वो इस उजाले की उपस्थिति से टकराता है, इसमें इसे अभिषेकित किया जो उसने विश्वास किया था, समझे, क्या ही अभिषेक है, और उसे कार्य आदेश दिया था। अब हम जानते हैं बौद्धिक रूप से उसने अपनी माँ से सुना था, वह जानता था कि क्या बात स्थान लेने जा रही थी और वह जान गया कि वो उस दिन में रह रहा था, लेकिन यहाँ उसने पाया कि वो एक विफल व्यक्ति था, इसलिए उसने, हो सकता है उसका विश्वास थोड़ा सा गिर गया हो, लेकिन फिर जब वो झाड़ियों के पास आता है, परमेश्वर ने कहा, मैंने अपने लोगों की पुकार को सुना है और मैं उनके पूर्वज इब्राहिम, इसहाक और याकूब की प्रतिज्ञा को याद करता हूँ और मैं नीचे उतर कर आया हूँ, मैं वहाँ पर व्यक्तिगत सर्वनाम है, मैं उन्हें छुड़ाने के लिए नीचे उतर आया हूँ। और अब और क्या मैं इसे जोड़ सकता हूँ, यदि परमेश्वर मुझे क्षमा करे, यदि वह अशोभनीय दिखाई देता है तो मैं धरती पर काम नहीं करता हूँ केवल मनुष्य के जरिए से, मैं दाखलता हूँ, तुम डालियाँ हो, और मैं केवल खुद को घोषित कर सकता हूँ जब मुझे एक मनुष्य मिल जाता है, और मैंने तुम्हें चुना है और मैं तुम्हें वहाँ भेजता हूँ ताकि उन्हें बाहर निकालो। देखा, अब ध्यान दें, मैं तुम्हारे मुंह में रहूंगा और मैं तुम इस छड़ी को लेना। और मूसा ने कहा, क्या मैं एक प्रमाण को देख सकता हूँ कि आप मुझे भेजेंगे और आपने मुझे अभिषेक किया है और आप इन चीजों को करने जा रहे हैं। कहा, तुम्हारे हाथ में क्या है? उसने कहा, एक छड़ी। कहा, इसे नीचे फेंक दो। वह एक सांप में बदल गई, वो हटने लगा। उसने कहा, इसे उठाओ। यह वापस एक छड़ी बन गई। कहा, अपने हाथ को अपने हृदय में रखो। इसे बाहर निकाला और यह कोढ़ था। इसे वापस रखा और यह ठीक हो गया था। कहा, उसने परमेश्वर की महिमा को देखा। मूसा के लिए और सवाल नहीं था। क्या आपने कभी देखा है वह कभी भी जंगल में फिर से वापस नहीं गया? वह जानता था कि वह अभिषेकित था। वह जानता था कहाँ ये सारी चीजें जो उसके हृदय में रही थी, ये महान अच्छे गुण, और वे अभिषेकित थे। अब वो तैयार है, वो जाने के लिए तैयार है। सो वो मिस्र की ओर आगे बढ़ता है। परमेश्वर ने कहा था, मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। सो इससे बात खत्म हो जाती है। यदि मैं तुम्हारे साथ रहूंगा, यही सब मूसा को जानना था, क्योंकि इसके हृदय में यह मान पुकार थी। और अब परमेश्वर ने कहा, मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। अब परमेश्वर ने मूसा के दावों को भी प्रमाणित किया था। मूसा का दावा, मैं प्रभु से मिला और उसने कहा, तुम्हें बताऊं, मैं हूँ, उसी ने मुझे भेजा है, समझे? अब उन्होंने कहा, यहाँ एक मनुष्य है, एक और यहूदी, हो सकता है इनमें से कुछ कट्टरपंथी जो हर समय सब प्रकार की योजना के साथ आते रहे हैं ताकि हमें बंधुआई से बाहर निकालें। और आप जानते हैं कि लोग कैसे होते हैं, जब वे गुलाम होते हैं या किसी बात के लिए बंधुआई में होते हैं, वहाँ हमेशा ही किसी प्रकार की चालबाजी की बातें आने लगती है, आप जानते हैं, ऐसा करने के लिए। सो मूसा, परमेश्वर ने मूसा से प्रतिज्ञा की, मैं तुम्हारे साथ रहूंगा, मैं तुम्हारे अंदर रहूंगा, मेरे शब्द तुम्हारे शब्द होंगे, तुम मेरे शब्द को बोलना और वही कहना जो मैं कहता हूँ। और अब जब मूसा वहाँ पर गया और उन्हें इस पुकार को दिया और फिरौन के सामने खड़ा हुआ और उससे कहा, इब्रानियों के परमेश्वर यहोवा ने कहा है, बालकों को बाहर निकाल लाओ, और वह उन्हें जाने नहीं देता है। सो उसने बुजुर्गों और फिरौन के सामने एक चिन्ह को प्रदर्शित किया और उन चिन्हों को परमेश्वर ने किया। उसने कहा, अब आने वाले कल में इस समय पर सूर्य ढल जाएगा, सारे मिस्र भर में अंधेरा छा जाएगा, और यह बिल्कुल उसी तरह से हो गया। और फिर उसने कहा, वहाँ देश भर में मक्खियाँ आ जाएंगी। और उसने अपनी छड़ी को आगे बढ़ाया और मक्खियों को बुलाया और मक्खियाँ आ गई। और उसने भविष्यवाणी की और जो कुछ भी उसने भविष्यवाणी की वह सब ठीक उसी तरह से घटित हुआ। ये परमेश्वर था, समझे? परमेश्वर ने उसे उसके जन्म से बुलाया था, उसमें महान विश्वास के गुणों को डाल दिया और फिर उसकी उपस्थिति के साथ नीचे उतर कर आया और उसमें कुछ तो महान अभिषेक किया और उसे अपने वचन के साथ भेज दिया और वो सही रूप से अपने दावों के लिए प्रमाणित हुआ था। कोई फर्क नहीं पड़ता कि कितनी भी बातें ऊपर आई हों, कितनी सारी बातें घटित हुई हों, परमेश्वर बात कर रहा था। मूसा की पहचान हुई थी। मूसा ने जो कहा, परमेश्वर ने उसका आदर किया। मैं चाहता हूं कि आप उस वचन को कभी न भूलें। मूसा ने जो कहा, परमेश्वर ने उसका आदर किया, क्योंकि परमेश्वर का वचन मूसा में था। मैं तुम्हारे मुंह में रहूंगा, ये सही बातों को बोलेंगे। अब परमेश्वर जो कहता है, वो उसे मूसा के जरिए से बोलता है और इसने उसके दावों को साबित किया और प्रमाणित किया। इसके अलावा उसे उसकी माँ के द्वारा उसके रहस्यमयी जन्म के बारे में बताया गया था और किस तरह से वो घड़ी नजदीक आ गई थी कि वहाँ एक छुटकारा होना था। लेवी के पुत्र और कन्या अमराम और योकेबेद, उन्होंने एक छुड़ाने वाले को भेजने के लिए परमेश्वर से प्रार्थना करना आरंभ किया। और जब आप देखते हैं कि प्रतिज्ञा की घड़ी नजदीक आ रही है तो ये लोगों को प्रार्थना करने और भूख के लिए तैयार करती है। और इसमें कोई संदेह नहीं कि उसकी माँ योकेबेद ने उसे कई बार बताया था, क्योंकि वो उसकी शिक्षक भी थी, जैसा कि हम कहानी को जानते हैं, और उसे बताया था कि उसने किस तरह से प्रार्थना की थी। और मूसा, जब तुमने जन्म लिया था पुत्र, तुम एक योग्य बालक थे, तुम अलग ही थे, तुम्हारे जन्म में कुछ तो घटित हुआ था। ज्यादा समय नहीं हुआ, मैंने बच्चों को नाट्य रूप में बताया था और कहा जब अमराम कमरे में प्रार्थना कर रहा था उसने देखा कि एक दूत अपनी तलवार को बाहर निकालता है और उसे उत्तर की ओर संकेत करता है और कहा तुम्हारे पास एक बालक होगा और वो बालकों को उत्तर की ओर प्रतिज्ञा देश की ओर ले जाएगा। उन छोटे बच्चों को नाट्य रूप में बता रहा था ताकि वे इसे समझ सकें, क्योंकि उनकी बुद्धि उस स्थान के लिए नहीं आ पाती है जो आप वयस्क लोगों की होती है और चीजों को समझ सकते हैं जैसे पवित्र आत्मा आपको इसे प्रकट करता है। अब भले ही उसकी माँ ने उसे ये बातें बताई थी और वो इसे जानता था, फिर भी उसे एक और स्पर्श की आवश्यकता थी। वो शिक्षा ठीक थी लेकिन उसे एक व्यक्तिगत संपर्क की आवश्यकता थी। यही है जो आज संसार को आवश्यकता है, यही है जो आज कलीसिया की आवश्यकता है, यही है जो सबकी आवश्यकता है, वही परमेश्वर के पुत्र और कन्या है। ऐसा करने के लिए आपको एक व्यक्तिगत संपर्क की आवश्यकता है। देखें, कुछ तो कोई फर्क नहीं पड़ता, आप जानते हैं कि वचन सच्चा है, आप जानते हैं कि यह सही है, लेकिन फिर जब यह संपर्क करता है और उसके बाद आप बात को पूरा होते हुए देखते हैं, तब आप जान जाते हैं कि आप सही रास्ते पर हैं, समझे? और देखो, यह हमेशा ही वचन के अनुसार होगा, ये वचन के साथ बिल्कुल ठीक बैठेगा, इसलिए ऐसा हुआ। अमराम की प्रार्थना बिल्कुल वचन के साथ ही थी, उनकी प्रार्थनाएं प्रतिज्ञा किए वचन के साथ थी। परमेश्वर ने उस समय पर ऐसा करने की प्रतिज्ञा की थी। उन्होंने इसके लिए प्रार्थना की और वहाँ एक उचित बालक का जन्म हुआ था और वे देखो, ओह मैं इसे कितना पसंद करता हूँ। देखो उस समय में जब फिरौन सभी बच्चों को खत्म करते जा रहा था, देखो उन्हें तलवार से खत्म कर रहा था, संरक्षण की तलवार, उन्होंने इन छोटे बच्चों को मौत के घाट उतार दिया, उनकी उन छोटी देहों को मगरमच्छ को खिला दिया, इतना तक कि मगरमच्छ शायद इब्रानी बच्चों के शरीर को खाकर मोटे हो गए होंगे। लेकिन बाइबल ने कहा माता पिता फिरौन के बच्चों को मारने के आदेश से नहीं डरे थे, वे नहीं डरे, उनके पास डर नहीं था क्योंकि उन्होंने इस बालक में कुछ तो आराम से देखा था। उन्होंने इसे देखा कि यह उनकी प्रार्थना का उत्तर था। और अब मूसा की यह सारी बातें पृष्ठभूमि के रूप में थी, इसलिए मूसा जानता था कि उसे इसराइल के बच्चों को छुटकारा देने के लिए उसी उद्देश्य से भेजा गया था। देखो उसके बाद सारी पृष्ठभूमि का ढेर लगने लगता है। जब आपको कुछ तो प्राप्त होता है और बाइबल को ला सकते हैं कहते हुए यह घटित होने जा रहा है और यहाँ पर वैसा होता है और यह उस समय पर होने जा रहा है, यहाँ ऐसा होता है और यह उस निश्चित समय पर होगा, ऐसा होता है, तब ये सब एक साथ मिलकर और हमारे लिए एक तस्वीर को बनाती है। ओह किस तरह से आज सुबह यह भवन है, हम किस तरह के इस समय के लोग हैं भाई नेविल, जैसे कि हम अपने बालों को सफेद रंग का होते हुए देखते हैं और हमारे कंधे झुक रहे हैं, जब हम संसार को हिलते और डुलते हुए देखते हैं जैसे यह है और हम कैसे चारों ओर देख सकते हैं और देखते हैं कि प्रतिज्ञा निकट आ रही है। यह है यह, मैं सोचता हूँ कि बहुत सी बार यदि किसी के अंदर एकाएक से बात उछल सकती है और एकाएक उसे समझ नहीं सकता, या मेरा मतलब वो इसे समझ जाता है और एकाएक ये चीज उसमें आने लगती है, तो यह चीज आपको लगभग अनंतता में भेज देगी और बस एक रैप्चर की बात के साथ, और इसने इसे कभी भी नहीं जाना था, और तभी ओह वे चीजें खुलने लगती हैं और हम देख लेते हैं और जान जाते हैं और समझते हैं और सब एक बार में उछलने लगती हैं। वो पुरुष या महिला, लड़का या लड़की हो सकता है, अपने हाथों को उठाएं और कहें आओ हम चलें, प्रभु यीशु आप देखते हैं। ओह वो घड़ी कितनी नजदीक है, मूसा जानते हुए कि उसका जन्म इस उद्देश्य के लिए हुआ था और खिड़कियों से बाहर देखता है और उन इब्रानियों को कड़ी मेहनत में देखता है, यहाँ वचन में वापस देखता है और कहा और वे 400 वर्ष तक डेरा डाले रहेंगे, देखो लेकिन मैं उन्हें एक शक्तिशाली हाथ से बाहर निकालूंगा। उसके बाद जब वो वापस आता है एक कार्य आदेश के बाद अभिषिक्त, वो जान गया कि उसने जन्म लिया और उसके विश्वास ने देखा, परमेश्वर के द्वारा उसने उन लोगों को देखा और जान गया कि वे परमेश्वर की संतान थे, क्योंकि संसार वचन ऐसा कहता है, वे संसार के नहीं थे और वे न ही बाकी के लोगों के जैसे थे, वे अलग ही थे और वे मिस्र के ऊंचे तड़क भड़क वालों के लिए सनकी और कट्टरपंथी थे, और उसे फिरौन का पुत्र बनना था और राज्य को ऊपर ले आया, लेकिन उसके अंदर कुछ तो था, एक सच्चा विश्वास जिसने उन चीजों पर नहीं देखा, वो तड़क भड़क जो उसकी विरासत होनी थी। उसने परमेश्वर की प्रतिज्ञा को देखा और वह जान गया था कि समय निकट आ रहा था। और उस मनुष्य ने निश्चय ही क्या सोचा होगा, मैं मूसा से वहाँ पर किसी दिन बात करना चाहता हूँ, जब मैं दूसरी तरफ मूसा से मुलाकात करूँगा। आप कहेंगे पागल भाई, नहीं ऐसा नहीं है, मैं परमेश्वर के अनुग्रह से उससे मिलने जा रहा हूँ। जी हाँ श्रीमान, मैं किसी दिन उससे बात करूँगा, स्वयं मूसा से, और किसी तरह से मैं उससे पूछना चाहूँगा, बस कैसे, जब उसने अपनी तैयारी को देखा, कैसी निराशा। शैतान कह रहा है, सुनो लोग तुम पर विश्वास नहीं करेंगे, वहाँ कुछ भी नहीं है। लेकिन जब वह बीज वहाँ जीवन के लिए ऊपर आता है, कुछ तो उस पर आता है, और वह जान जाता है कि कुछ तो बात जगह लेने जा रही है। वह जान जाता है, उस घड़ी की ओर देखा और देखा यह कौन सा समय था, और वह जान गया, और उसने निश्चय ही सोचा होगा जब उसने उसे देखा। और जब वो इस सब को एक साथ एकत्र करता है, ये सारी महान चीजें जो उसने देखी हैं, उस वचन का समय, उसकी माँ और उसके पिता की प्रार्थना, और उसने एक असाधारण जन्म को लिया था, एक विचित्र बालक, और साथ ही पूरी तरह से उसमें वहाँ उसमें कुछ तो हो रहा था। और अब वहाँ से हटकर और सोचने की कोशिश करता है कि वह अपने विद्यालय से सैन्य प्रशिक्षण को लेगा और बच्चों को छुड़ाएगा, और यह असफल रहा। उसके बाद वह जंगल के अंदर चला जाता है और एक सुंदर इथियोपियाई लड़की से विवाह कर लेता है, और उनका गेरशोम नाम का एक छोटा सा लड़का था। और एक दिन भेड़ बकरियों को चराने के दौरान अचानक ही उसने पहाड़ के चोटी पर जलते हुए झाड़ियों को देखा जो जल रही थी, और वो वहाँ पर चला गया, और ना ही एक बौद्धिक, ना ही एक कल्पना, ना ही एक भ्रम, ना ही दृष्टि का भ्रम, लेकिन उसमें वो अब्राहम का परमेश्वर था। एक उजाले में, एक झाड़ी में, वहाँ पीछे अग्नि का एक स्तंभ था, वो आग जैसे लहरें ऊपर उठ रही हूँ, लेकिन इसने झाड़ियों को परेशान नहीं किया, और वचन की आवाज, परमेश्वर की आवाज ने वहाँ से बात की और कहा, मैंने तुम्हें चुना है, तुम वो व्यक्ति हो, मैंने तुम्हें इस उद्देश्य के लिए बढ़ाया है, मैं यहाँ तुम्हें चिन्हों के द्वारा साबित कर रहा हूँ, तुम उन बच्चों को छुड़ाने के लिए वहाँ पर जा रहे हो, क्योंकि मेरे वचन को पूरा होना है। ओह, उसके उस दिन के वचन को पूरा होना है। हम उस समय में जी रहे हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई और क्या कहता है, वचन को पूरा होना है। आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे, लेकिन उसका वचन नहीं। अब जब मूसा ने यह सब को एक साथ किया और हर दिशा से इसे देखा, इसने उसके विश्वास को अभिषेक किया। आमीन। ओ प्रभु, क्या ही विचार है। यह स्वयं एक वो वचन सीधे सीधे दिखा रहा था कि यह क्या था, और परमेश्वर का बोलना, और वहाँ पर इसका प्रमाण इसने अभिषेकित किया, जो विश्वास उसके पास उसमें था, उस काम में जाने के लिए। इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? हमें पश्चाताप को करने की आवश्यकता है, हमें एक बेदारी की आवश्यकता है। मैं खुद से कह रहा हूँ, समझे, मुझे एक हिलावट की आवश्यकता है, मुझे कुछ तो आवश्यकता है। मैंने कहा कि आज सुबह मैं अपने आप से बात कर रहा हूँ, या अपने बारे में मुझे एक जागरूकता की आवश्यकता है। और जब मैं उस महान प्रमाण के बारे में सोचता हूँ, हर एक चीज पूरी तरह से वहाँ पर रखी हुई है, और इसने मूसा के विश्वास को अभिषेकित किया, और ओह, उसने देखा कि वहाँ कुछ भी नहीं था। यहाँ वो मिस्र से भाग गया, वास्तव में यह एक विद्रोह या कुछ तो करना आरंभ कर सकता था, और वो हो सकता था, वह उठ सकता था और मिस्र में एक क्रांतिकारी कार्य को आरंभ कर सकता था, और एक सेना को लेकर और लड़ सकता था। लेकिन आप देखें, और उसके पक्ष में कई हजार लोग थे, लेकिन इसके बावजूद वह यहाँ तक ऐसा करने के लिए भी डरता था, सेना उसकी तरफ थी। लेकिन अब वो यहाँ 40 वर्ष के बाद आता है, वो 80 वर्ष का था, उसके हाथ में केवल एक छड़ी को लेकर आता है। क्यों? जो उसके हृदय में जल रहा था वह एक वास्तविकता बन गई थी। तब वो अभिषेकित था, और वो जानता था कि उसके पास यहोवा यह कहता वाला वचन था। अब उसे रोकने के लिए कुछ भी नहीं था, उसे कोई सेना की आवश्यकता नहीं थी, परमेश्वर उसके साथ था, यही सब उसकी आवश्यकता थी, परमेश्वर उसके साथ। ओह, जब आप जानते हैं कि परमेश्वर ने आपको कुछ निश्चित कामों को करने के लिए भेजा है और आप वहाँ पर इसे बढ़ते हुए देखते हैं वहाँ, तब कोई भी इसका स्थान नहीं ले सकता है। ऐसा ही है। मुझे वो समय याद है जब परमेश्वर ने मुझे कुछ चीजों के बारे में बताया था जो घटित होने जा रही थी, और फिर मैं आगे बढ़कर और देखता हूँ यह ठीक वहाँ पर रखी हुई है। किस तरह से, ओह क्या ही अनुभूति हो रही है। परिस्थिति पहले से ही नियंत्रण में है। ऐसा ही है। देखो, क्योंकि परमेश्वर ने ऐसा कहा है। मुझे याद है, आप में से बहुतों को याद होगा कि फिनलैंड में वो छोटा लड़का जी उठा था और उसके बाद मरे हुओं में से जी उठा जो एक कार के द्वारा मारा गया था, और मैं सड़क के किनारे पर खड़ा हुआ था और मैंने उस बच्चे से दूर चलना आरंभ किया और मुड़कर और पीछे देखा, और किसी ने तो मेरे कंधे पर अपना हाथ रखा और मैंने सोचा कि ये भाई मूर थे और मेरे आसपास कोई भी नहीं था, और मैंने पीछे देखा और फिर मैंने ऊपर पहाड़ को देखा। मैंने कहा ठीक है, मैंने उस पहाड़ी को कहीं तो देखा है, लेकिन हम इस रास्ते पर पहले नहीं आए हैं, हम दूसरे रास्ते पर आए हैं। वह पहाड़ी कहाँ पर है? और मैंने उस कार को वहाँ पर देखा और देखा कि वह टक्कर खाई हुई थी। उस छोटे लड़के को वहाँ पर देखा, वहाँ पड़ा हुआ था, उसके आवारा किस्म के कटे हुए बाल थे, क्योंकि हम इसे यहाँ यही कहते हैं। उसकी आंखें ऊपर की ओर घूम गई थी, जैसे एक दिन भाई वे जब गिर गए थे, और उन छोटे से पैर के मोजों के ऊपर से गाड़ी निकल गई थी जहाँ पर से उसके छोटे छोटे अंग टूट गए थे, और उसकी आंख, नाक और कान से लहू बह रहा था, और उसकी छोटी सी पतलून को देखा और बटन उसके साथ अटके हुए थे यहाँ से, और उसके छोटी कमर के किनारे से, और उसके छोटे मोजे ऊपर आ गए थे, जैसे लंबे मोजे जैसे हम कई वर्ष पहले पहना करते थे, और मैंने चारों ओर देखा और ठीक उसी तरह था, बिल्कुल उसी तरह जो पवित्र आत्मा ने मुझे दो वर्ष पहले बताया था, जब आप सभी लोगों ने राष्ट्र भर में अपने बाइबल में लिख कर रखा था कि ऐसा घटित होगा। ओह वहाँ तब स्थिति सामने है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह कैसा मरा हुआ है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई और क्या कहता है, सब पूरा हुआ था, उसे वापस आना होगा। मैंने कहा यदि ये बच्चा इस मरी अवस्था से जी नहीं उठता है तो मैं झूठा भविष्यवक्ता हूँ, मैं परमेश्वर का एक गलत वर्णन करने वाला हूँ, क्योंकि दो वर्ष पहले मेरे अपने देश में उसने मुझे बताया कि ऐसा होगा, और वहाँ इन सेवकों और सभी जनों ने अपने बाइबल के पीछे उस कोरे पन्ने पर लिखा, और यहाँ पर यह बिल्कुल वैसे ही है। इसे लिखे हुए कोरे पन्ने पर से पढ़ें, यह किस तरह से एक देश में होगा, चट्टाने एक के ऊपर एक रखी हुई होंगी और इत्यादि, वो मारा जाएगा और सड़क के दाईं ओर पड़ा रहेगा। मैंने कहा यहाँ है ये, कोई भी इसे रोक नहीं सकता है, परिस्थिति पहले से ही नियंत्रण में है। जो विश्वास मेरे हृदय में था वो अभिषेकित था। ओह यदि मैं केवल यह समझा सकता था, वो विश्वास जो परमेश्वर पर जो मेरा विश्वास था, जिसने मुझे बताया और यह कभी भी विफल नहीं हुआ, मुझे बताया परिस्थिति अब नियंत्रण में है। यहाँ है यह जिसे दो वर्ष पहले मैंने आपको दिखाया है, यहाँ पर यह बिल्कुल ठीक उसी क्रम में वो लड़का पड़ा हुआ था। केवल एक ही चीज जो तुम्हें करना है, शब्द को बोलना है, और वो छोटा लड़का मरे हुओं में से जी उठा था। देखा, मैं सोच रहा था और भाई फ्रेड सॉटमैन की ओर देख रहा था जो वहाँ पीछे बैठे हुए थे, और भाई बैंकवुड और वे भाई लोग थे, और एक दिन अलास्का के महामार्ग पर किस तरह से मैं यहाँ कलीसिया में खड़ा हुआ था और आपको एक ऐसे जानवर को बताया जिसके हिरण के जैसे सींग है 42 इंच के, और वो है एक चांदी रंग का अमेरिकन जाति का जंगली स्लिपरिप गिरजी भालू है। मैं वहाँ पहले कभी भी नहीं रहा था, और किस तरह से वो मैं इसे पकड़ने जा रहा था, और ये कैसा होगा, और कितने लोग मेरे साथ होंगे, और वे कैसे कपड़े पहने होंगे। आप इसे जानते हैं, आप में से हर एक जन जानता है, हफ्तों और हफ्तों पहले इससे पहले ये घटित हो। और वहाँ जब मैं वहाँ पर चला गया इसे नहीं जानते हुए, वहाँ पर वो जानवर पड़ा हुआ था, और मैं जान गया, और यह असंभव बात थी यदि एक शिकारी को पता चलेगा या इस टेप को सुनता है। इस तरह से आप एक जानवर के सामने नहीं जा सकते हैं, वह कूद कर और दौड़ेगा, लेकिन उसने नहीं किया, और वहाँ पर वह मेरे निजी कमरे में टंगा हुआ है। वहाँ एक चांदी रंग का अमेरिकन जाति का भालू लड़का है, बिल्कुल ठीक उसी तरह से है। और वहाँ पर एक मापने का टेप रखा हुआ है, एक मापने की डोरी उसको बिल्कुल सही दिखाने के लिए, और एक सिंह कम से कम 2 इंच या उससे अधिक सिकुड़ जाता है जब यह जानवर के ऊपर हरा भरा होता है और जब यह सूख जाता है, लेकिन यह कभी नहीं सिकुड़ा। यह अभी भी नाक के ऊपर 42 इंच का है। देखा, वहाँ पर चांदी रंग का अमेरिकन जाति का भालू रखा है, यह 7 फुट लंबा है, बिल्कुल ठीक वैसा ही, और सब कुछ ठीक उसी तरह से है जैसा ये था वहाँ अब रखा हुआ है। लेकिन जब उस वक्त उस व्यक्ति ने मुझसे कहा, अब देखो भाई ब्रैनम, हमें ये जानवर मिल गया जिसके बारे में आपने हमें बताया था, लेकिन आपने मुझे बताया कि आपको एक चांदी रंग का अमेरिकन जाति का भालू मिल जाएगा पहाड़ी के तल तक पहुंचने से पहले, वहाँ पीछे जहाँ वे लड़के हैं जो एक हरे रंग की शर्ट के साथ थे। मैंने कहा, ये यहोवा यो कहता है, परमेश्वर ने ऐसा कहा। लेकिन भाई ब्रैनम, उसने कहा, मैं यहाँ मीलों तक हर कहीं सब कुछ देख सकता हूँ, वहाँ कुछ भी नहीं है, वह कहाँ से आएगा? मैंने कहा, यह सवाल करना मेरा काम नहीं है, परमेश्वर ने ऐसा कहा है, और वो यहोवा यीरे है। वो वहाँ पर एक भालू को ला सकता है, वो वहाँ पर एक को रख सकता है, और उसने यह किया और वो वहाँ है। यह स्थिति नियंत्रण में है। और जब मूसा ने देखा कि इस उद्देश्य के लिए वो ऊपर आया था और उसने उस महान परमेश्वर से आमने सामने मुलाकात की थी जिसने उसे बुलाया था और उसे अभिषेक किया था और उसकी पहचान दी और कहा, यह तुम्हारी बुलावट है मूसा, मैं तुम्हें भेज रहा हूँ और मैं तुम्हें अपनी महिमा दिखाने जा रहा हूँ, और यहाँ हूँ मैं एक जलती हुई झाड़ी में, वहाँ आगे जाओ, मैं तुम्हारे साथ रहूँगा। और यहाँ तक छड़ी की आवश्यकता भी नहीं पड़ी, उसके पास वचन था, प्रमाणित वचन था, और वहाँ पर वो चला गया। इसने उसके विश्वास को अभिषेकित किया जो उसमें था, और ये हमें अभिषेक करता है जब हम देखते हैं कि हम अंतिम दिनों में रह रहे हैं। यह देखते हुए कि ये सारे चिन्ह जो हम देखते हैं वो स्थान ले रहे हैं जिसके लिए वचन में कहा गया है कि वे अंतिम दिनों में स्थान लेंगे, वहाँ आकाश से लेकर राजनीतिक ताकत तक और लोगों का स्वभाव और संसार की भ्रष्टता और जो महिलाओं के बीच है, और वे अंतिम दिनों में किस तरह से करेंगे और पुरुष कैसे करेंगे और कलीसियाएं कैसे करेंगी, राष्ट्र कैसे करेंगे और परमेश्वर कैसा करेगा। और हम यहाँ इस सब को हमारे ऊपर रखा हुआ देखते हैं। ओह, यह हमारे विश्वास को अभिषेक करता है, ये हमें बड़े चक्रों में से बाहर ले आता है। देखा, ये हमें संसार की अन्य चीजों से अलग करता है। देखा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता हम कितने छोटे हैं या हम कितनी कम संख्या में हैं, हम पर लोग कितना हंसे हैं, मजाक उड़ाया गया है, इससे थोड़ा भी फर्क नहीं पड़ता। ऐसा ही है, हम इसे देखते हैं। हमारे अंदर कुछ तो है, हमें इस समय को देखने के लिए पहले से ठहराया गया था और हमें इसे देखने से कोई भी रोक नहीं सकता है। आमीन। यहाँ परमेश्वर से बोल चुका है, यह पहले से घटित हुआ है, हम इसे देखते हैं। ओह, हम परमेश्वर का इसके लिए कैसे धन्यवाद करें। ओह, तब यह आपके विश्वास को बाहर लाता है जब हम इन चीजों को यहाँ पर घटित होता हुआ देखते हैं। अब हम यहाँ फिर से पढ़ते हैं, मूसा ने मसीह के कारण निंदित होने को मिस्र के भंडार से बड़ा धन समझा। अब उसने मसीह के कारण निंदित होने को प्रिय जाना। अब याद रखें, मसीह के लिए निंदा, देखो वहाँ मसीह की सेवा करने में निंदा को लेना है। यदि आप संसार के साथ बहुत लोकप्रिय हैं, तब आप सेवा नहीं कर सकते हैं, आप मसीह की सेवा नहीं करते हैं, नहीं आप नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आप देखना एक निंदा जो इसके साथ जाती है। संसार ने हमेशा ही निंदा को किया है, बहुत ही हजारों वर्ष पहले एक निंदा थी जो इसके साथ गई थी, और मूसा फिरौन बनने को था, वो अगला होने वाला फिरौन था, फिरौन का पुत्र, और वो होने वाला अगला फिरौन था, वह लोगों के बीच समर्थन के साथ था, और फिर भी उसने आदर किया। प्रिय जानने का मतलब आदर देना। उसने मसीह के लिए निंदा को उन सभी चीजों की तुलना में अधिक आदर दिया जो मिस्र उसे प्रदान कर सकता था। मिस्र उसके हाथों में था, लेकिन फिर भी वह जानता था कि मसीह का मार्ग को लेना एक निंदा था, लेकिन ये जानकर वह बहुत ही खुश था कि उसके पास कुछ तो था, जिसने उसे मसीह के लिए निंदा लेने का आदर किया है, मेरा मतलब मसीह की निंदा, सारी तड़क भड़क से अधिक जो उसे विरासत में मिली थी। उसके पास उसके अंदर एक विरासत थी जो बाहरी विरासत ने उसे दिया था, उससे कहीं अधिक थी। ओ, यदि हम आज ऐसे ही बन सकते हैं और पवित्र आत्मा अभिषेक करे जो हमारे पास है, हमारे अंदर है, वो विश्वास भक्तिपूर्ण जीवन के लिए मसीह के लिए समर्पित। अब इस तरह के विश्वास के साथ ये जो उसके पास था उसने देखा और उसने निंदा के सम्मान को आदर किया। आज कोई तो कह सकता है, सुनो, क्या आप उन लोगों में से एक हैं? ओह ठीक है, ओह आप बस इससे थोड़ा शर्मिंदा होते हैं, लेकिन उसने इसका आदर किया, इसे दुनिया की तुलना में एक बड़ा खजाना समझा, क्योंकि उसमें कुछ तो था जो वो बात कर सकता था और कह सकता था, हाँ मैं इसका आदर करता हूँ, यह बेहद सम्मानित है, मैं उनमें से एक होने के लिए प्रसन्न हूँ। देखा, मैं खुद को इब्रानी की गिनती के रूप में करने से प्रसन्न हूँ और न ही मिस्री के रूप में। आज मसीहों को वही बात कहना चाहिए, मैं खुद को एक मसीह समझने से प्रसन्न हूँ, ताकि संसार के हीजों से और संसार के वर्ग से दूर रहूँ, न ही केवल एक कलीसिया के सदस्य की नाई, बल्कि एक जन्म पाए हुए मसीह के नाई जो वचन के अनुसार जीता है। भले ही मुझे यहाँ तक कलीसिया के सदस्यों के द्वारा एक कट्टरपंथी भी बुलाया जाता होगा, फिर भी मैं इस बात को बढ़कर आदरणीय समझता हूँ, उसकी तुलना में यदि मैं शहर या देश का सबसे लोकप्रिय व्यक्ति होता था, उस तुलना में मैं संयुक्त राष्ट्र का राष्ट्रपति होता या धरती पर का एक राजा होता था, आप समझे। मैं इसे अधिक आदरणीय मानता हूँ, क्योंकि परमेश्वर ने अपनी दया में दुनिया की नींव डालने से पहले मुझे देखा और वहाँ पर एक छोटे से बीज को रखा, ताकि मेरा विश्वास संसार की इन चीजों से ऊपर से उड़ जाए, और अब उसने मुझे बुलाया है और मैं अपने स्थान को सम्मान करता हूँ। और पौलुस ने कहा, उसने अपने कार्य के स्थान को आदर दिया, देखो, और ओह कि परमेश्वर ने उसे गमलियल के जैसे बड़ा शिक्षक होने के लिए बुलाया था, लेकिन पौलुस को मसीह के लिए बलिदान होने के लिए बुलाया गया था, समझे। अब ये बात उसी तरह से है, ध्यान दे, इस तरह के विश्वास के साथ वो कभी भी अपनी दृष्टि पर निर्भर नहीं था जिसे वो देख सकता था। अब उसने वहाँ पर कुछ भी नहीं देखा सिवाय मिट्टी में काम करने वाले लोगों के, वे गुलाम, वे कैद में थे, हर दिन मारे जाते थे, चाबुक से मारा जाता था, मजाक उड़ाया जाता, उनकी धार्मिक मान्यताएं कट्टरपंथी थी, और वहाँ फिरौन सिंहासन पर बैठा हुआ था जो नहीं जानता था या उनके धर्म के बारे में कुछ भी आदर नहीं करता था, वह इसके बारे में कुछ भी नहीं जानता था, वह एक मूर्ति पूजक था, तो वो केवल क्या ही है, आज की तस्वीर है, और वहाँ पर एक अलग ही धर्म है, और कैसे यह, यदि यह मूसा अब भी राष्ट्रपति के साथ उसी गद्दी में है या उस बड़े व्यक्ति फिरौन के साथ, ताकि उसकी मृत्यु होने पर अपने स्थान को ले ले, और फिरौन एक बूढ़ा व्यक्ति था, और अब भी मूसा ने उस पुकार को सोचा, उसने वहाँ उसी खिड़की से देखा जहाँ से फिरौन ने देखा, क्योंकि वो उसके घर में था, और फिरौन ने वहाँ बाहर उन लोगों को देखा और देखा कि वे लोग जो अपने हाथ को ऊपर उठा रहे थे और वे एक चाबुक को लेते और उनके मरने तक मारते थे क्योंकि वे प्रार्थना कर रहे थे, वे उन पर तलवार को चलाते क्योंकि वे यहाँ तक हार गए हर समय आज्ञा का उल्लंघन करने के लिए, और उन्हें तब तक काम करवाते जब तक कि उनके छोटे बूढ़े शरीर गिर नहीं जाते और उन्हें खाने के लिए पर्याप्त से भी आधा खाना देते। वे कहते, ठीक है, वे कट्टरपंथियों के एक झुंड के अलावा कुछ भी नहीं, शायद इंसान भी नहीं, और फिर भी मूसा का जो उस पर विश्वास था उनकी ओर देखा और उनसे कहा, वे परमेश्वर के धन्य लोग हैं, आमीन। यह मुझे पसंद है, इस तरह के विश्वास के साथ उसकी आंखें मिस्र के तड़क भड़क पर नहीं अटकी, ये परमेश्वर की प्रतिज्ञा पर अटकी थी, उसकी विश्वास की उकाब की आंखों ने मिस्र के तड़क भड़क के पार देखा था। उसे याद आता है वह अब एक उकाब बन रहा है, वह एक भविष्यवक्ता है, और उसकी उकाब की आंखें उन चीजों से ऊपर उठने लगी हैं। ओह, मैं इसे कितना पसंद करता हूँ। प्रभु, आज कैसे अक्सर आज मसीह लोग अपने ज्ञान पर भरोसा करते हैं और जो वो देखते हैं या जो वे समझ सकते हैं बजाय अपने विश्वास के, ताकि जो कुछ भी आप देख सकते हैं या आप जो समझ सकते हैं और तड़क भड़क उस पर भरोसा करें। जैसे कि आप महिलाएं, मैं हमेशा आपको बताता रहा हूं, आपको अपने बालों को बढ़ने देना चाहिए, आपको चेहरे को रंगना नहीं चाहिए, आपको स्त्रियों और मसीह की तरह व्यवहार करना चाहिए। आप सड़क पर देखते हैं और आज महिलाओं को अनैतिक रूप से कपड़े पहने हुए देखते हैं, तो आप सोचते हैं ठीक है, वो कलीसिया से संबंध रखती है, मैं ऐसा क्यों नहीं कर सकती, देखा, और वो अपने बालों को कटवाती है, मैं ऐसा क्यों नहीं कर सकती, तो वह बहुत ही प्यारी सी दिखाई देती है और उतनी ही बुद्धिमान और एक व्यक्तित्व जो मेरे पास है भी नहीं, तो फिर मैं ऐसा क्यों नहीं कर सकती, मुझे ये करना चाहिए। जब आप ऐसा करते हैं तो आप अपने विश्वास को लकवाग्रस्त कर देते हैं, समझे, आप अपने विश्वास को बढ़ने का मौका नहीं देते हैं, उस पर आरंभ करें। जैसा कि मैंने कहा, किसी ने कहा, भाई ब्रैनम, ये देश, ये लोग आपको एक भविष्यवक्ता के रूप में आदर देते हैं। इन चीजों के लिए आपको इस तरह से महिलाओं को और पुरुषों को फटकार नहीं देना चाहिए। आपको उन्हें सिखाया जाना चाहिए कि कैसे भविष्यवाणी करें और दानों को प्राप्त करें। मैंने कहा, मैं उन्हें बीज गणित कैसे सिखा सकता हूँ जब वे अपने क ख ग को भी नहीं जानते हैं, समझे। अब केवल वहाँ से आरंभ करें, अपने आप को साफ करें, ताकि जब आप सड़क पर बाहर निकलें तो आप किसी मसीह की तरह दिखाई दें, किसी भी तरह से देखो, और तब आप उसकी तरह व्यवहार करें, समझे, और आप इसे अंदर से अपने आप से नहीं कर सकते हैं, यह मसीह तुम्हारे अंदर आना है। और यदि वो बीज वहाँ पर रखा हुआ है और वो उजियाला इस पर चमकने लगता है, तो यह जीवन में आ जाएगा। यदि यह जीवन में नहीं आता है, तो जीवन में आने के लिए वहाँ कुछ भी नहीं था, क्योंकि ये निश्चय ही दूसरों पर साबित होगा। देखो, तुरंत ही जीवन में आने लगता है, जैसे ही उजियाला इस पर चमकने लगता है। यही महिलाओं के लिए एक ताड़ना है, मैं जानता हूँ, यही है जो इस टेप में सुन रहे हैं या इसमें सुनेंगे, यही आपके लिए एक फटकार है बहन, ऐसा होना चाहिए, यह होना चाहिए, क्योंकि यह दिखाता है, मैं परवाह नहीं करता कि आपने क्या किया है, हो सकता है कि आप अपने पूरे जीवन में धार्मिक रहे होंगे, हो सकता है कि आप कलीसिया में रहे होंगे, आपके पिता एक सेवक हो सकते हैं या आपके पति सेवक हो सकते हैं, लेकिन जब तक आप परमेश्वर के वचन के आज्ञा का उल्लंघन करते हैं, यह दिखाता है कि वहाँ पर कोई जीवन नहीं है। जब आप देखते हैं वो चीज बाहर आई है और पवित्र आत्मा का जीवन, तो इसे देखें जब ये दूसरों तक पहुँचती है, देखें कि वे क्या करते हैं। यदि ये उन पर लाता है, कोई आश्चर्य नहीं, क्यों उन फरीसियों के लिए क्या ही फटकार थी जो यीशु को बुलाते थे। जब वो उनके विचारों को समझ सकता था, तो उन्होंने उसे बालजबुल कहा, और उस छोटी वेश्या ने कहा, क्यों, ये व्यक्ति मसीहा है, वचन कहता है कि वह ऐसा करेगा। देखो, वो पहले से ठहरा हुआ बीज वहाँ रखा हुआ था, और जब वह उजाला इस पर चमका, तो यह जीवन में आता है। आप इसे रोक कर नहीं रख सकते हैं, आप जीवन को छुपा नहीं सकते हैं। आप सीमेंट को लेकर एक घास के गुच्छे पर डाल सकते हैं और इसे शीतकाल में मार सकते हैं। अगले वसंत काल में आपको सबसे ज्यादा घास कहाँ पर मिलेगी, ठीक सीमेंट के किनारे के आसपास, क्योंकि वो अंकुरित बीज उस पत्थर के नीचे होता है। जब सूर्य चमकने लगता है, तो आप इसे रोक नहीं सकते हैं। ये वहाँ से होकर घूमते हुए मार्ग को निकालता है और ठीक उसके किनारे से बाहर निकलता है और अपने सिर को परमेश्वर के महिमा के लिए तान लेता है। देखो, आप जीवन को नहीं छुपा सकते हैं। जब सूर्य वनस्पति जीवन पर चमकने लगता है, तो इसे जीना होता है, और जब पवित्र आत्मा आत्मिक जीवन को प्रभावित करता है जो एक मनुष्य में होता है, तो यह ठीक वहाँ पर अपना फल लेकर आता है। देखा, तो इस पर ध्यान दिए बिना कि आप कितने सच्चे और ईमानदार हैं, आप कैसे कहते हैं कि आप नहीं हैं और कह रहे हैं कि वे ये महिलाएं इन गंदे कपड़ों और इत्यादि चीजों को बाहर पहनती हैं, बस एक साधारण सी कपड़े की पट्टी चढ़ाकर रास्ते पर होती हैं। हालांकि आप विश्वास नहीं करते कि ये आप हैं, आप अपने पर भरोसा नहीं करवा सकते हैं, आप साबित कर सकते हैं कि आप व्यभिचार के लिए निर्दोष हैं, लेकिन परमेश्वर की किताब में आप व्यभिचार कर रहे हैं। यीशु ने कहा, जो कोई स्त्री को कुदृष्टि से देखता है, वो पहले ही अपने हृदय में व्यभिचार कर चुका, और आपने स्वयं को इसी तरह से प्रदर्शित किया। देखिए, आप इसे तब तक नहीं देख सकते जब तक कि वो जीवन वहाँ पर नहीं रखा हो। आप किसी और को देखते हैं और कहते हैं, ठीक है, मैं बहन जॉन्स को जानता हूँ, भाई जॉन्स एक सेवक है, उसकी पत्नी ऐसा करती है और वैसा करती है। मैं परवाह नहीं करता, वो जो करती है यह वचन है। यीशु ने कहा हर मनुष्य का वचन झूठा ठहरे और मेरा सत्य होगा। ये बाइबल है और जब वह उजाला वास्तव में इसे प्रभावित करता है तो इसे जीवन में आना होगा। इसे तो बस जीवन में आना है। अब मूसा की महान आंख, उसकी उकाब की आंखें मिस्र के तड़क भड़क के पार देखा। आज का सच्चा मसीही विश्वासी, कोई फर्क नहीं पड़ता कलीसिया क्या कहती है, कोई और क्या कहता है, जब उजाला उस पर चमकता है तो वे उसी परमेश्वर के प्रमाणित होने को देखते हैं। वो अग्नि का स्तंभ वहाँ पर मंडराने लगता है और उन चिन्ह और अद्भुत कामों की प्रतिज्ञा की है वो वचन रखा गया है और इसे जीवन में लाता है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता ये कितना छोटा है और संख्या में ये कितने कम है। परमेश्वर का झुंड हमेशा ही कम संख्या में रहा है, समझे। डरो मत छोटे झुंड, ये आपके पिता की भरी इच्छा है कि वह तुम्हें राज्य को दे, समझे। वे इसे पकड़ते हैं। परमेश्वर प्रतिज्ञाबद्ध है कि उन्हें हर संप्रदाय से, हर वर्ग, हर स्थान से इसे देखने के लिए भेजता है यदि वे जीवन के लिए ठहराए गए हैं। उस बूढ़े शिमोन को देखो जो जीवन के लिए ठहराया गया। जब मसीहा मंदिर में आया उस एक बच्चे के रूप में जो उसकी माँ की बाहों में था, शिमोन कहीं तो पीछे एक कमरे में था, पढ़ रहा था। पवित्र आत्मा ने उसे उठाया क्योंकि वह इंतजार कर रहा था, वो जीवन उसके अंदर था। उसने कहा जब तक मैं प्रभु के मसीह को नहीं देख लेता तब तक मैं नहीं मरूंगा। और वहाँ मंदिर में प्रभु का मसीह था। पवित्र आत्मा ने उसे उसके कर्तव्य स्थान से बाहर लेकर आया और वहाँ से चलकर गया और उस बच्चे को उठाया और कहा अपने दास को शांति से विदा कर क्योंकि मेरी आंखों ने तेरे उद्धार को देख लिया है। हन्ना नाम की एक बूढ़ी अंधी स्त्री कोने में थी जिसने दिन और रात प्रभु की सेवा की थी। वह भी भविष्यवाणी कर रही थी और कह रही थी मसीहा आ रहा है, मैं उसे आते हुए देख सकती हूँ, जबकि वो अंधी थी। उसी समय पर जब वो वहाँ पर था, वह छोटा सा जीवन जो उसमें था वो भविष्यवाणी कर रही थी ये वहाँ पर होगा, ये वहाँ पर होगा, ये वहाँ पर होगा। तब वो ही जीवन, वो प्रकाश उस इमारत में आता है एक बालक के रूप में, एक अवैध बालक की नाई जो उसके कपड़ों के टुकड़ों में लपेटा हुआ था, इमारत के अंदर आता हुआ। और पवित्र आत्मा उस बूढ़ी अंधी स्त्री पर आता है और वो आत्मा के द्वारा आगे आती है, लोगों के बीच में से बढ़ती हुई और इस बालक के पास खड़ी होती है और माँ को और बालक को आशीष देकर और बताती है कि इस बालक का भविष्य क्या होगा। देखो जीवन के लिए ठहराया गया। देखा, उनकी ओर देखो, उनमें वे दर्जनों नहीं थे। नूह के दिनों में केवल 8 प्राण ही बचाए गए थे, शायद ही बहुत से लोग, लेकिन वे सारे जो उस जीवन के लिए ठहराए गए हैं वे उस समय में आएंगे। देखें कि प्रत्येक युग में पवित्र आत्मा कैसे कार्य करता है, लोगों को खींचता है। अब हम पाते हैं कि मूसा के विश्वास ने उसे प्रेरित किया ताकि देखे कि क्या होगा, ना कि क्या था। आज के बजाय आने वाले कल को देखें, तड़क भड़क की बजाय प्रतिज्ञा को देखें, संगठन की बजाय लोगों को देखें, समझे। परमेश्वर ने ऐसा किया। लूत मिस्र में तड़क भड़क को बढ़ते हुए देख सकता था, या वहाँ सदोम में देख सकता था। लूत बहुत अधिक पैसों के होने की संभावनाओं को देख सकता था। लूत संभावनाओं को देख सकता था कि जब वो सदोम की ओर देखता था और वह शायद बन सकता है, एक इब्रानी होने के नाते वह वहाँ पर एक बड़ा व्यक्ति बन सकता है क्योंकि वह एक बहुत ही बौद्धिक व्यक्ति था और अब्राहम का भतीजा था। इसलिए उसने सदोम की ओर जाने का फैसला किया। लूत की बुद्धिमता ने उसे तड़क भड़क की स्मृति को देखने के लिए नेतृत्व किया। लूत की बुद्धिमता ने नेतृत्व किया कि उस आशीष को देखे जो तड़क भड़क की है, लेकिन उसका विश्वास इससे इतना लकवा ग्रस्त हो गया था, उसने उस आग को नहीं देखा जो उस किस्म के जीवन को नष्ट करने जा रही थी। और इसी तरह से आज वे लोग हैं, वे संभावनाओं को देखते हैं जो एक बड़े संगठन से संबंधित है, वे संभावनाओं को देखते हैं जो शहर के सामाजिक लोग लोगों के साथ खड़े हुए हैं, लेकिन वे संभावनाओं को नहीं, वे उनके विश्वास के लकवा ग्रस्त होने को नहीं देखते हैं। मैं इसे दोहराता हूँ ताकि इसे गलत न समझा जाए। आज की महिलाएं, वे जैसा कि मैंने कहा, वे फिल्मी सितारों की तरह व्यवहार करना चाहती हैं। आज पुरुष टेलीविजन के हास्य अभिनेताओं की तरह अभिनय करना चाहते हैं। आज के प्रचारक दिखाई देता है अपने कलीसिया को किसी किस्म का आधुनिक ढंग का आवास बनाना चाहते हैं, सदस्य बनाना और इत्यादि। वे हो सकता है बिशप या एक प्रमुख अध्यक्ष बनने की संभावनाओं को देखते हैं या ऐसा ही कुछ। तो यदि वे इन बातों के साथ कलीसिया जाएंगे, वचनों को भूलते हुए, जब यह उनके ठीक सामने रखा होता है जो पूरी तरह से परमेश्वर की सामर्थ से प्रमाणित हुआ है और परमेश्वर के वचन के द्वारा लोगों में जीवित है, फिर भी वे इसे नहीं चाहते हैं। वे कहते हैं, हम इस तरह के किसी के साथ मिश्रित नहीं होना चाहते हैं। यह उनके संगति के पहचान पत्र को ले लेगा, ये उनके सांप्रदायिक आदेश को ले लेगा। फिर भी लूत की तरह ईमानदार पुरुष सदोम में बैठा हुआ है, यह जानते हुए यह गलत है। समझे? देखा, वे क्या करें जब वे ऐसा करते हैं? वे उस छोटे से विश्वास को लकवा ग्रस्त कर देते हैं जो उनके पास था। यह काम नहीं कर सकता है। अब मूसा उसको छोड़ देता है और उसने उसके विश्वास ने संसार को लकवा ग्रस्त कर दिया। या तो आपका विश्वास तड़क भड़क को लकवा ग्रस्त कर देगा या तो तड़क भड़क आपके विश्वास को लकवा ग्रस्त कर देगा। अब आपको उस एक को या तो दूसरे को लेना है। और आप देखते हैं कि बाइबल नहीं बदलती है, परमेश्वर नहीं बदलता है, वो न बदलने वाला परमेश्वर है। और अब हम पाते हैं कि आज के लोग, देखो, वे बड़ी बड़ी चीजों के लिए देखते हैं, बड़े संगठन, मैं फलाना फलाना से संबंध रखता हूँ, देखा, और वे वहाँ पर जाते हैं और देखो, वे उन सड़क के लोगों से अलग नहीं है, वहाँ कुछ भी और बात नहीं है, उनके पास कुछ तो बौद्धिक बात होती है और वे आगे बढ़ते हैं। जब आप दैविक चंगाई के बारे में बात करते हैं, वो अग्नि का स्तंभ, परमेश्वर का उजियाला, वे कहते हैं यह मानसिक बातें हैं। एक मनुष्य ने परमेश्वर के दूत की तस्वीर को लिया अगले दिन एक बैप्टिस्ट सेवक और इस पर हंसने लगा। देखो, यह निंदा पूर्वक बात है, समझे? इसके लिए कोई क्षमा नहीं है। यीशु ने यही कहा, देखो यह निंदा पूर्वक बात है जब आप इसे देखते हैं कि ये उन्हीं कामों को कर रहे हैं जो मसीह ने किया। और उसने कहा, जब उन्होंने देखा कि मसीह में उन कामों को देखा, वो बलिदान था, और उन्होंने उसे बालजबूल, एक शैतान कहकर बुलाया, क्योंकि कारण वो इसे कर रहा था। और अब वे कहते हैं, उसने कहा, मैं इसके लिए तुम्हें क्षमा करता हूँ, लेकिन यह पवित्र आत्मा उसी काम को करने के लिए आता है यदि तुम उसके विरोध में एक शब्द भी बोलते हो। इस संसार में या आने वाले संसार में तुम्हें कभी क्षमा नहीं किया जाएगा, समझे? केवल एक शब्द ही आप इसके विरोध में कहते हैं तो, समझे? और तब, क्योंकि यदि वो जीवन, यदि आपको अनंत जीवन के लिए ठहराया गया है, तब वो जीवन आगे निकल कर आएगा जब आप इसे देखते हैं। आप इसे पहचान लेंगे जैसे कुएं पर वो स्त्री और विभिन्न लोगों की तरह। लेकिन यदि ये वहाँ पर नहीं है तो ये जीवन में नहीं आ सकता है, क्योंकि जीवन में आने के लिए वहाँ पर कुछ भी नहीं है। जैसे मेरी बूढ़ी माँ कहती थी, आप एक शलगम से लहू को नहीं निकाल सकते हैं क्योंकि इसमें कोई लहू नहीं है। अब यह वही बात है और ये लकवा ग्रस्त कर देता है जो छोटा विश्वास आपके पास है। लूत तड़क भड़क को देख सकता था, लेकिन उसके पास पर्याप्त विश्वास नहीं था कि वो आग को देखे जो इस तरह की तड़क भड़क को नष्ट करेगा। मैं सोचता हूँ, क्या आज हमारे पास है? मैं सोचता हूँ, क्या हम तो जो महिलाएं लोकप्रिय होना चाहती हैं, जो कलीसिया में बाकी महिलाओं की तरह व्यवहार करना चाहती हैं, यदि वे देखते हैं कि वे बाकी महिलाओं की तरह व्यवहार करना चाहती हैं, वे एक सुंदर महिला होने की संभावनाओं को देख सकती हैं, चेहरे को रंगने के द्वारा, वे एक सुंदर महिला देख सकते हैं, युवा आकार होने के द्वारा, अपने बालों को कटवाकर और किसी अन्य लोगों की तरह या फिल्म अभिनेता की तरह व्यवहार करके। लेकिन मैं सोचता हूँ कि क्या इसने उनके विश्वास को लकवा ग्रस्त नहीं किया है, यह जानकर कि बाइबल कहती है कि एक स्त्री ऐसा करती है तो वो एक लज्जाजनक स्त्री है। और एक स्त्री जो ऐसे वस्त्र पहनती है जो पुरुष से संबंधित वस्त्र है, परमेश्वर के नजर में घृणित है, तंग पतलून और इत्यादि और छोटे कपड़े जो वे पहनते हैं, और ये बस ऐसा कठोर बनता जाता है, इतना तक कि ऐसा करना लोगों की नियमित दिनचर्या बन जाती है। मैं सोचता हूँ कि क्या ये उसी छोटे से विश्वास को लकवा ग्रस्त नहीं करता है जो आपके पास था, यहाँ तक कि कलीसिया जाते हैं। आप देखते हैं, यही वो चीज है ये करता है। लूत ने ऐसा किया और इसने उसे लकवा ग्रस्त कर दिया और इसने वहाँ पर उसके लोगों को लकवा ग्रस्त कर दिया। वे इसे नहीं देख सके, लेकिन अब्राहम एक प्रमाणित विश्वास के साथ, उसका चाचा, उसने तड़क भड़क की ओर नहीं देखा। वह इसके साथ कुछ लेना देना नहीं रखना चाहता था, भले ही उसके लिए रहना कठिन था और खुद से रहना था, और सारा वो जंगल में रही जहाँ पर चलना मुश्किल था, वो बंजर जमीन थी, लेकिन उन्होंने तड़क भड़क या लोकप्रिय होने की संभावनाओं को नहीं देखा। सारा जो देश की सबसे खूबसूरत महिला थी, बाइबल ऐसा बताती है, वो रंग में गोरी थी, सभी महिलाओं से सबसे गोरी थी, और अब वो अपने पति के पास भी रही और वो उसकी आज्ञा में रही, यहाँ तक कि उसने उसे प्रभु कहा, जिसके लिए बाइबल उल्लेख करता है नए नियम में शामिल है, कहा तुम किसकी बेटियां हो जब तक आप विश्वास का पालन करते हैं। देखो, पति को उसने अपना प्रभु कहा, और यहोवा के दूत ने उनके मंदिर में मुलाकात की, और या वहां वे उनके छोटे तंबू में थे और उन्हें बताया, यहां तक कि उनके पास रहने के लिए एक घर भी नहीं था, वे बंजर भूमि में रहते थे, और वहाँ आप हैं। आप उस दिन के नमूने को वापस फिर से देखते हैं, बस ठीक बिल्कुल उसी तरह से है जैसे यह तब था। अब मूसा ने फिर से अपने महान विश्वास के साथ वर्तमान दुनिया की वर्तमान चीजों को कह सकता है नहीं, और एक धार्मिक चयन को बना सकता है। उसने परमेश्वर के लोगों के साथ दुखों का सामना करना चुना, उसने इसके साथ जाने का फैसला किया, क्यों? उसका विश्वास। उसने प्रतिज्ञा को देखा, उसने अंत समय को देखा, उसने आने वाले कल की ओर देखा, और उसने अपने विश्वास को खोल दिया, और उसने उस बात पर ध्यान नहीं दिया कि उसकी आंखें यहाँ होने वाली संभावना में क्या देखती हैं, कि वो फिरौन था और वो फिरौन बनने जा रहा था। उसने सीधे सीधे आने वाले कल की ओर देखा। ओह, यदि लोग केवल ऐसा कर सकते थे, वर्तमान के संसार को नहीं देखा। यदि आप वर्तमान के संसार को देखते हैं तो आप इसके साथ एक चुनाव करते हैं, अपनी आंखों को इससे छुपाएं और परमेश्वर की प्रतिज्ञा को देखें जो दूर आने वाले कल में है। अपने विश्वास के द्वारा वो चुन सकता था। उसने अब्राहम का पुत्र कहलाने जाने को चुना और फिरौन के पुत्र कहलाने से इनकार कर दिया। भला वो कैसे हो सकता है जबकि वो सारा राज्य मिस्र ने संसार को पछाड़ा था। वो संसार का राजा था और 40 वर्ष का वो एक जवान व्यक्ति था, यहाँ सिंहासन लेने को तैयार था, लेकिन उसने ना ही कभी अपनी बुद्धि को, देखो स्त्रियाँ उसके इर्द गिर्द दिन प्रतिदिन घूमती रहती उनके जनाना घर में, उस तड़क भड़क की ओर देखें बैठकर और शराब पीना, और जब वे नृत्य को करती उसके सामने निवस्त्र होते हुए देखना, और वे उसे पंखा हिलाते, और सारे संसार भर की स्त्रियां होती और गहने और खजाने, उसकी सेना वहां पर बाहर होती। केवल एक चीज जो उसे करना था कि वह बैठकर अपने पसंद का खाना खाता और कहता है, भेजें रक्षक सेना संख्या फलाना फलाना को, फलाना फलाना उस देश पर कब्जा करने के लिए भेजो। मैं सोचता हूँ कि मैं बस इसे चाहता हूँ, बस इतना ही उसे करना था। वहाँ बैठे रहता और वे उसे पंखा हिलाते, और वो अपने मुंह को खोले रखता, उस दिन की प्यारी खूबसूरत नृत्य करके अर्ध कपड़े पहने हुए उसके मुंह में शराब को डालते, उस पर अपनी बाहों को डालकर उसे उसका भोजन खिलाती। संसार की सारी सबसे खूबसूरत महिलाएं होती वहाँ मौजूद, सारी तड़क भड़क ठीक उसके सामने रखी हुई थी, लेकिन उसने क्या किया? उसने उस बात से परे देखा। वो जानता था कि उसके लिए वहाँ पर वो आग तैयार थी। वो जानता था उस मार्ग में मृत्यु रखी हुई थी, समझे? वह जानता था कि ऐसा था, और उसने वहाँ पर अस्वीकृत और ठुकराए हुए लोगों के झुंड की ओर देखा, और विश्वास के द्वारा उसने मसीह की निंदा को सहन करना चुना, और खुद को बुलवाया कि मैं अब्राहम का पुत्र हूँ, मैं इस फिरौन का पुत्र नहीं हूँ। भले ही तुम मुझे एक बिशप या एक डीकन या एक आर्क बिशप या एक पोप बनाओ, मैं इस चीज का पुत्र नहीं हूँ, मैं अब्राहम का पुत्र हूँ, और खुद को संसार की चीजों से अलग करता हूँ। आमीन, आमीन और आमीन। विश्वास के द्वारा ऐसा किया, उसने तड़क भड़क को दूर कर दिया, उसने अगले बिशप बनने की संभावनाओं को निकाल दिया, उसने अगले आर्क बिशप बनने की संभावनाओं को निकाल दिया, या अगले चुनाव में मुख्य अध्यक्ष होने की संभावनाओं को, या जो भी ये था, उसने उसे निकाल दिया, उसने इस पर देखने से इनकार कर दिया। अब यदि मैं बिशप बन जाता हूँ तो मैं अंदर जाऊँगा और लोग होली फादर कहेंगे, या डॉक्टर फलाना फलाना, या एल्डर फलाना फलाना। किस तरह से वे सेवक इकट्ठे होने पर वे पीठ पर थपथपाएंगे और कहेंगे, कहो लड़के, मैं आपसे कहता हूँ इस लड़के के पास कुछ तो है। ओह, शांत हो जाओ, यहाँ बिशप आ रहा है। देखो जो वो कहता है वही नियम है। देखो यहाँ फलाना फलाना आ रहा है। लोग दुनिया भर से उड़कर पोप को देखने आएंगे और पैरों को और अंगूठियों को चूमेंगे और इत्यादि। कैसे, क्या ही कैथोलिक के लिए एक संभावना है, क्या ही एक प्रोटेस्टेंट के लिए संभावना है, बिशप के लिए या मुख्य अध्यक्ष होने के लिए या जो कुछ भी है संगठन के लिए कोई एक महान व्यक्ति। भले ही देखते हुए, लेकिन आप देखें, विश्वास की आंख उसके सबसे ऊपर देखती है और आप इसे दूर वह अंत तक देखते हैं जो कि परमेश्वर कहता है कि सारी चीजें नष्ट हो जाएंगी। विश्वास जो उकाब की आंख है आपको इस सब के ऊपर ले जाती है और आप आने वाले कल को देखते हैं, आज को नहीं। और अब्राहम का पुत्र कहलाने के लिए चुनेगा। फिरौन बिना विश्वास के परमेश्वर के बच्चों को कट्टरपंथी के रूप में देखा। कोई विश्वास नहीं, उसने उन्हें गुलाम बना दिया क्योंकि उसने जो भी कहा था उससे उसको डर नहीं था। वो परमेश्वर से डरता नहीं था। उसने सोचा कि वो परमेश्वर था। उसने सोचा उसके देवता जिसकी उसने सेवा की है, जिससे वो एक बिशप था, वह सबके ऊपर मुख्य अध्यक्ष था। ये उसके देवता ही थे जिसने ऐसा किया था। यहाँ इस बात का कुछ लेना देना नहीं, इसलिए उसने उन्हें गुलाम बना दिया। वह उन पर हंसने लगा, उनका मजाक उड़ाया, वैसे ही जैसे आज लोग करते हैं, बिल्कुल उसी तरह से। मूसा के विश्वास ने उन्हें प्रतिज्ञा देश में देखा, एक धन्य लोग। उन्हें उस प्रतिज्ञा देश की ओर ले जाने के लिए ये बहुत ही एक मुश्किल लड़ाई हो सकती है, लेकिन मूसा ने उनके साथ जाने के लिए चुना। मैं कितना कुछ उस पर बोल सकता हूँ, लेकिन मेरा समय निकल रहा है। देखा, ध्यान दें, उन लोगों को उस ओर मोड़ना बहुत ही मुश्किल बात हो सकती है। तुम्हें उनके साथ रहने के लिए जाना होगा, तुम्हें उनमें से एक बनना होगा। वे पहले से ही बहुत बुद्धिमान हैं कि तुम उन्हें आगे नहीं ले जा सकते हो, समझे? लेकिन वहाँ कुछ तो घटित होने वाला है। वह उनके सामने अलौकिक प्रमाण को किया जाएगा। यह एक कठिन बात होने जा रही है। संस्थाएं तुमसे मुंह मोड़ लेगी और ये सारी चीजें घटित होंगी। ये भयानक है, तुम्हें क्या करना है, लेकिन फिर भी अपने चुनाव को कर लो। मैं उनमें से एक हूँ। हाँ, उसके विश्वास ने ऐसा किया, उसका विश्वास चमक उठा। जी हाँ श्रीमान, उसने इसे देखा। उन्हें उस प्रतिज्ञा में ले जाने के लिए यह कठिन बात थी जो कुछ भी हो, लेकिन उसने उनके साथ जाना पसंद किया। उन्होंने उसके साथ जो कुछ किया उसके बावजूद, और उन्होंने उससे मुंह मोड़ लिया, कुछ भी हो वह चला गया, वो उनके साथ बाहर निकल रहा था। अब मैं आशा करता हूँ कि आप समझ रहे हैं। तो ठीक है, कुछ भी हो उनके साथ वो जाता है, उनके साथ एक बनता है। यह सही है क्योंकि यह आपका कर्तव्य है। ये एक कठिन लड़ाई हो सकती है और बहुत सी बातों से होकर गुजरना होगा, लेकिन कुछ भी हो जाना होगा। लेकिन उसके विश्वास ने उसे वचन के चुनाव को लेने के लिए अगुवाई की, न कि तड़क भड़क के लिए। उसने वचन को लिया। यही है वो जो मूसा के विश्वास ने किया। जब विश्वास परमेश्वर के सबसे बुरे, याद रखें, अब यहाँ तड़क भड़क संसार था, सर्वोच्च संसार का राजा, और परमेश्वर की प्रतिज्ञा कहाँ थी? कीचड़ के खड्डे में, एक कीचड़ में काम करने वाला। लेकिन जब विश्वास परमेश्वर के सबसे बुरे को देखता है, तो ये इसकी तुलना में जो संसार का सबसे अच्छा दिखाई पड़ सकता है, इससे अधिक मूल्यवान और आदरणीय मानता है। जी हाँ श्रीमान, जब विश्वास इसे देखता है, जब विश्वास इसे देख सकता है, जब वचन में विश्वास वचन को प्रकट बनता देख सकता है, तो यह उन सभी तड़क भड़क और आर्क बिशप बनना और अन्य सभी चीजें जिसकी तुम बात कर सकते हो, उसकी तुलना में उसके लिए अधिक है। विश्वास ऐसा करता है, समझे? आप सबसे बुरे, तिरस्कृत, ठुकराए हुए और जो कुछ भी हो सकता है, इसे सबसे खराब होने दें, और फिर भी विश्वास का आदर जो संसार सर्वोच्च उत्पन्न कर सकता है, उसकी तुलना में 10,00,000 मील अधिक होगा। आमीन। इसी तरह से हम उस गीत को गाते हैं, मैं प्रभु के कुछ तिरस्कृत लोगों के साथ जाऊंगा। देखा, ओ प्रभु, क्योंकि आप देखें, विश्वास देखता है जो परमेश्वर करना चाहता है। ओह, मैं आशा करता हूँ कि ये अंदर जा रहा है। विश्वास वर्तमान समय को नहीं देखता है, विश्वास यहाँ इसे नहीं देखता है, विश्वास यह देखने के लिए निहारता रहता है कि परमेश्वर क्या चाहता है, और यह उसके अनुसार काम करता है। यही है जो विश्वास करता है, ये देखता है कि परमेश्वर क्या चाहता है और परमेश्वर क्या करना चाहता है, और विश्वास उसके जरिए से संचालित होता है। विश्वास एक लंबी दूरी की दृष्टि है, ये अपनी दृष्टि में कम नहीं होता है, यह लक्ष्य को पकड़े रहता है। आमीन। कोई भी अच्छा निशानेबाज इसे जानता है, समझे कि यह लंबी दूरी है, यह एक दूरबीन है, यह एक दूरबीन यंत्र है जिससे आप यहाँ नजदीक के लिए नहीं देखते हैं। आप यह देखने के लिए दूरबीन का उपयोग नहीं करते कि समय क्या हुआ है, देखा, आप इसका उपयोग नहीं करते हैं, लेकिन आप दूरी को देखने के लिए दूरबीनों का उपयोग करते हैं। और विश्वास वही करता है, विश्वास परमेश्वर के दूरबीनों को उठाता है, उन दोनों को, दोनों तरफ से नया और पुराना नियम और हर एक प्रतिज्ञा को देखता है जो उसने की है, और विश्वास इसके उस ओर देखता है, और विश्वास उससे चुनता है बावजूद इसके कि वर्तमान काल यहाँ क्या कहता है। वह अंत की ओर देखता है, वह इस तरफ से देखने के लिए अपनी दृष्टि को पीछे नहीं करता है, वह उस ओर देखता है, वह वचन पर विस्तार पूर्वक केंद्र दृष्टि लगाए रहता है। यही है जो विश्वास करता है, यही वो विश्वास है जो एक ऐसे व्यक्ति में है जो उन चीजों को करता है। अब देखो फिरौन ने क्या कहा, जिसे फिरौन ने महान कहा, परमेश्वर ने घृणित कहा। फिरौन कह सकता था, देखो मूसा यहाँ, क्योंकि तुम अगले फिरौन हो, जब मैं यहाँ से चला जाऊँगा मैं तुम्हें इस राजदंड को सौंप दूंगा, मैं इस राजदंड को तुम्हें दे दूंगा, ये तुम्हारा है। देखा, अब ये बहुत ही अच्छा है, आप एक महान पुरुष बनने जा रहे हो मूसा, तुम बिशप बनने जा रहे हो, तुम ये वो या इत्यादि बनने जा रहे हो, तुम हमें छोड़कर मत जाओ, तुम यहीं रहो। लेकिन आप देखें कि उसने उसे महान कहकर बुलाया और परमेश्वर ने कहा यह एक घृणित था। अब स्त्रियां, आप एक मिनट सोचें, वैसे ही आप पुरुष, जिसे संसार महान कहता है परमेश्वर गंदगी कहता है, क्या बाइबल ने नहीं कहा यह एक महिला के लिए घृणित बात है कि वो एक पुरुष से संबंधित वस्त्र को पहने? और आपको लगता है कि तुम इसे करने में अच्छे दिखाई पड़ते हो? देखा, आप केवल शैतान के लिए स्त्री देह को प्रदर्शित कर रहे हैं, और ये ऐसा ही है, इसलिए ऐसा ना करें। और आप पुरुष लोग जो संसार की चीजों के लिए जीते हो और इससे मेल जोल रखते हो और मिलते जुलते हो, और आप पुरुष लोग, आपका इस बारे में आपकी अपनी पत्नी के साथ इतना तालमेल नहीं है और चीजों को पूर्ण रूप से ऐसा करने देते हैं, आपके लिए शर्म की बात है और अपने आप को परमेश्वर का पुत्र कहते हैं, मुझे सदोमियों की तरह लग रहा है। देखा, आपकी भावनाओं को चोट पहुंचाने के लिए नहीं, लेकिन आपको सत्य बताने के लिए। प्रेम सुधार करता है, ये हमेशा करता है। जो माँ अपने बच्चे की देखभाल नहीं करेगी और उसे सुधार नहीं करेगी और इसे तमाचा नहीं मारेगी और इसे नहीं बताएगी, इसके लिए वो एक माँ भी नहीं है, यह सही बात है। अब और देखें कि अब कौन सी बात जगह लेती है। मूसा ने इसे अपने दर्शन के द्वारा देखा और फिर उन्होंने से कहा यह महान है, परमेश्वर ने कहा यह घृणित है। सो परमेश्वर, मूसा ने वो चुना जो परमेश्वर ने कहा। अब ध्यान दे, विश्वास देखता है कि परमेश्वर क्या चाहता है कि आप देखें, समझे, विश्वास वो देखता है जो परमेश्वर देखता है, और तर्क वितर्क और चेतनाएं वो देखते हैं जो संसार चाहता है कि आप देखें। ध्यान दें, क्यों, ये तो केवल मनुष्य की चेतना है, ये तो केवल इसका कारण है, यह अच्छा, क्या यह उतना अच्छा नहीं है, समझे, बिल्कुल ऐसा ही है जब आप उन चेतनाओं का इस्तेमाल करते हैं जो वचन के विपरीत है। देखो, तब यही है वो जो संसार चाहता है कि आप देखें, लेकिन विश्वास उस पर ध्यान नहीं देता है, विश्वास वो देखता है कि परमेश्वर ने क्या कहा, समझे। आप जानते हैं, आप अपने तर्क वितर्क को निकाल दें, वे कारण तर्क वितर्क की चेतना वो देखती है कि संसार क्या चाहता है कि आप देखें, बड़े संप्रदायों को, तो ठीक है, क्या आप एक मसीही हैं? ओह, मैं एक प्रेस्बिटेरियन हूँ, मेथोडिस्ट, लूथरन और पेंटिकॉस्टल, या जो कुछ भी ये है, मैं यह हूँ, वो हूँ, या इत्यादि, देखो यह यही चेतनाएं हैं। मैं पहली कलीसिया से संबंध रखता हूँ, आप देखें, ओह मैं कैथोलिक हूँ, मैं यह हूँ, वो हूँ, देखो यह आप कहते हो, अब यह यही चेतनाएं हैं। आप इसे कहना पसंद करते हैं क्योंकि यह एक संप्रदाय है, कुछ तो बड़ा है, ठीक है, हम, हमारे पास संसार की किसी भी कलीसिया की तुलना में लगभग अधिक सदस्य हैं। देखो हम, लेकिन केवल एक सच्ची कलीसिया है और आप इससे नहीं जुड़ते हैं, आप इसमें जन्म लेते हैं, समझे, और यदि आप इसमें जन्म लेते हैं तो जीवित परमेश्वर स्वयं आपके जरिए से कार्य करता है और खुद को ज्ञात करवाता है। देखा, यही है वो जहाँ परमेश्वर वास करता है, उसकी कलीसिया में। परमेश्वर हर रोज कलीसिया जाता है, बस वो कलीसिया में ही रहता है, वो आप में रहता है, आप उसकी कलीसिया हो, आप उसकी कलीसिया हो, आप वो भवन हो जिसमें परमेश्वर वास करता है। आप अपने आप में जीवित परमेश्वर की कलीसिया हो, और यदि जीवित परमेश्वर अपने जीवित अस्तित्व में रहता है तो आपकी प्रतिक्रिया परमेश्वर की होती है। यदि ऐसा नहीं है तो परमेश्वर वहाँ नहीं है। वो आपको इस तरह की प्रतिक्रिया नहीं करने देगा कि जब वो यहाँ वचन में कहता है जो उसका छाया चित्र है, ऐसा मत करो और आप जाकर करते हैं। देखो, यह गलत है। जब आप इसे अस्वीकार करते हैं तब ये दिखाता है कि वो जीवन आप में है ही नहीं। समझे, यह सही है। विश्वास ने मूसा को आज्ञा पालन के रास्ते पर पहुंचाया। ध्यान दे, मूसा वहाँ युवा फिरौन है, वहाँ युवा मूसा है, वे दोनों एक मौके के साथ हैं। मूसा ने लोगों के अपमान को देखा और मिस्र में जो कुछ था उसकी तुलना में इसे बड़ा धन समझा, और वो विश्वास के द्वारा चला। उसने अनुकरण किया जो वचन में उसके विश्वास ने कहा, और इसने उसे आज्ञा पालन के रास्ते की ओर पहुँचाया, और अंत में महिमा के लिए अमर हार न ही कभी मरना होगा परमेश्वर की उपस्थिति में। ये दृष्टि और चेतनाएं तरक भड़क की ओर ले जाती हैं, फिर उनको उसकी मृत्यु की ओर ले जाती है, और मिस्र का विनाश जो उसका देश है, और ये तब से कभी भी वापस नहीं आया है। आप वहाँ हो, इसकी ओर देखते हो तुम मरोगे, उसकी ओर देखते हो तुम जियोगे। अब अपने चुनाव को कर लो। यह वही बात है जिसे परमेश्वर ने अदन के बगीचे में आदम और हवा के सामने रखी थी। देखा, विश्वास के द्वारा आपको अपना चुनाव करना ही होगा। अब ध्यान दें, दृष्टि ने फिरौन को उसकी मृत्यु और उसके शहर के विनाश की ओर नेतृत्व किया। मूसा अपने विश्वास के साथ फिरौन से कभी भी नहीं डरा। देखा, उसने परवाह नहीं किया कि फिरौन ने क्या कहा। उसने फिरौन के विषय चिंता नहीं की, ना ही उससे अधिक उसकी माता और उसके पिता की उनकी धमकियों के बारे में चिंता की। जब मूसा को उसकी पुष्टि हुई और वही वो व्यक्ति था जो उन्हें मिस्र में से छुड़ाने वाला था या इसराइल को मिस्र से बाहर निकालने वाला था, तो उसने कभी भी परवाह नहीं की कि फिरौन ने क्या कहा। वह उससे नहीं डरा था। आमीन आमीन आमीन। आप समझे मेरा क्या मतलब है? विश्वास में कोई डर नहीं होता है। विश्वास इसके बारे में जानता है। विश्वास, जैसा कि मैंने हमेशा ही कहा है, इसकी बहुत बड़ी मांसपेशियां और छाती पर बाल होते हैं। विश्वास ने कहा, चुप हो जाओ, और हर कोई चुप हो जाता है। ऐसा ही है, मैं जानता हूं कि मैं कहां पर हूं। उनमें से बाकी के कहते हैं, ठीक है, तो हो सकता है वो करता है। देखा, लेकिन आपको खड़े होना है और अपनी मांसपेशियों को दिखाना है, बस इतना ही। विश्वास इसे करता है। ध्यान दें, मूसा कभी भी फिरौन से नहीं डरा परमेश्वर के द्वारा एक उसकी पुकार को प्रमाणित करने के बाद। जब मूसा ने विश्वास किया कि उसे इसके लिए बुलाया गया था, लेकिन जब परमेश्वर ने उसे वहां ऊपर बताया ये ऐसा है, और नीचे आकर फिरौन और बाकी सभी लोगों के सामने दिखाया कि उसे इसे करने के लिए भेजा गया था, मूसा कभी भी फिरौन से नहीं डरा था। ध्यान दें, फिरौन ने मूसा पर भले ही अपनी बुद्धि का इस्तेमाल किया। ध्यान दें, उसने कहा, मैं तुम्हें बताऊंगा क्या, मैं तुम्हारे साथ एक समझौता करूंगा। पीड़ाएं उसे नष्ट करने के बाद उसने कहा, मैं तुम्हारे साथ एक समझौता करूंगा, तुम बस थोड़ी दूर ही आराधना के लिए जाओ, तीन दिन, केवल थोड़ी दूरी पर जाना और आगे मत जाना। लेकिन आप जानते हैं, यह फिरौन की चेतनाओं ने उसे बताया कि तुम कुछ ही दूरी पर जाना और आगे मत जाना। क्या हमारे पास आज इस तरह से नहीं है? यदि तुम केवल कलीसिया से जुड़ते हो तो कोई बात नहीं, लेकिन आप जानते हैं, वो विश्वास जो मूसा के पास था, उसने कुछ ही दूरी पर के धर्म में विश्वास नहीं किया। उसने कहा, हम सब जा रहे हैं, हम दूर जा रहे हैं। यह सही बात है, हम प्रतिज्ञा किए हुए देश की ओर जा रहे हैं। हम बस यहाँ से बाहर निकलकर और एक संस्था को नहीं बनाते हैं और रुक जाएं, हम आगे बढ़ते रहते हैं। आमीन। मैं प्रतिज्ञा किए हुए देश की ओर जा रहा हूँ। परमेश्वर ने हमसे प्रतिज्ञा की है। आज हमारे पास कितने सारे फिरौन हैं जो पुलपिट में खड़े हैं, जो संस्थाओं के प्रधान हैं। अब यदि तुम केवल ऐसा करो और वैसा करो, बस इतना ही, तो देखो बस कुछ ही दूरी तक। लेकिन मूसा ने कहा, ओ नहीं 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 नहीं। देखा, फिरौन ने कहा, ठीक है, क्यों नहीं, यदि तुम्हारे पास उस प्रकार का धर्म होने जा रहा है तो मैं तुम्हें बताऊंगा कि तुम्हें क्या करना है। केवल तुम और प्राचीन लोग आराधना के लिए जाएं। देखो, केवल तुम और प्राचीन लोग आराधना करने के लिए जाओ, क्योंकि तुम सबके पास उस प्रकार का धर्म हो सकता है, लेकिन इसे लोगों के बीच नहीं लेकर आओ। आप जानते हो मूसा ने क्या कहा, यहाँ पर जानवर का एक खुर भी नहीं छूटेगा। हम सभी यहाँ से जा रहे हैं, हम सब जा रहे हैं। मैं तब तक नहीं जाऊँगा जब तक वे नहीं जाते, और जब तक मैं यहाँ पर हूँ मैं तुम्हारे हाथों में रहूँगा। आमीन। मैं नहीं जाऊँगा जब तक वे भी नहीं जा सकते हैं, और ऐसा ही है। ओह क्या ही एक बहादुर सेवक है, आमीन। मैं उन्हें अपने साथ ले जाना चाहता हूँ, केवल इसलिए कि मैंने इसे पा लिया है और मैं बैठकर और कहूँ तो अब यह ठीक बात है। नहीं श्रीमान, हम लोगों को भी चाहते हैं, हम में से हर एक जन जाएगा, आमीन। उसने कहा हम यहाँ तक हर एक भेड़ या कुछ भी पीछे नहीं छोड़ेंगे, एक खुर भी पीछे नहीं छूटेगा, हम सारे प्रतिज्ञा किए हुए देश में जा रहे हैं, आमीन। हम में से हर एक जन, चाहे आप एक घरेलू स्त्री हो या एक छोटी सी दासी हो, या आप एक बूढ़ी महिला हो या एक जवान पुरुष या बूढ़े पुरुष या जो भी है, हम किसी भी तरह से जा रहे हैं, हम में से कोई एक भी नहीं छूटेगा, आमीन। हम में से हर एक जन जाएगा और हमें कोई भी और नहीं रोकेगा। यह सही है प्रभु। उनके धर्म वास्तव में वहाँ वाद विवाद में थे क्या, नहीं थे? ओह प्रभु नहीं, मूसा ने यहाँ इस कुछ ही दूर धर्म पर विश्वास नहीं किया था, नहीं उसने उस पर विश्वास नहीं किया। जी हाँ श्रीमान। ओह प्रभु हम इस पर पूरे दिन तक बोल सकते हैं, लेकिन मुझे कुछ देर बाद अपने विषय में जाकर और प्रचार को आरंभ करना है। ध्यान दें, इसे ध्यान दें। ओह कितना सुंदर है, ओह मैं इसे पसंद करता हूँ। आप जानते हैं, अतः फिरौन ने कहा चले जाओ। परमेश्वर ने उसे तब ग्रस्त किया मूसा की आवाज के द्वारा। उसने सब चीज पर प्रहार किया, उसने वो सब कुछ किया जो किया जाना था। उसने रोका, उसने दिन के मध्य में सूर्य को वही रोके रखा, उसने और सब कुछ किया। उसने दिन को अंधकारमय कर दिया, मेंढक मक्खियाँ जू और हर एक चीज को लेकर आया, आग धुआं और उसके परिवारों की मृत्यु और हर एक चीज को लाया, उसने सारी चीजों को किया। अतः फिर उनको यह कहना पड़ा था चले जाओ, सब कुछ ले लो और चले जाओ। ओह प्रभु परमेश्वर की स्तुति हो। मैं बहुत ही खुश हूँ कि एक मनुष्य पूरी तरह से परमेश्वर की सेवा कर सकता है, इतना तक कि वो शैतान वो नहीं जानता कि उसके साथ क्या करे। यह सही है, केवल परमेश्वर की पूरी तरह से आज्ञा में रहा, इतना तक कि शैतान ने कहा ओह बस दूर चले जाओ, मैं इसे और नहीं सुनना चाहता हूँ। यह सही है, आप इसे पूरी तरह से कर सकते हैं। अब देखें, यदि परमेश्वर मूसा का समर्थन नहीं करता है तो वह एक हंसी का पात्र बन जाता, लेकिन परमेश्वर ठीक वहाँ पर था, प्रमाणित करते हुए जो कुछ उसने कहा वह पूरा हुआ। और फिर उनको अपने दर्जे को पकड़े रहना था क्योंकि वह एक बिशप था, आप जानते हैं, इसलिए उसे वहाँ पर बने रहना था। वो इनकार नहीं कर सका, वो नहीं ऐसा नहीं कह सका क्योंकि यह पहले से ही घटित हो रहा था। देखा, वो इसे इनकार नहीं कर सका क्योंकि यह पहले से ही घटित हो रहा था। इसलिए अतः उसने कहा ओह बस चले जाओ, मैं तुम्हें और नहीं सुनना चाहता हूँ, यहाँ से चले जाओ, तुम्हारा सब कुछ ले लो और जाओ। ओह प्रभु, अब हम यहाँ मूसा को देखते हैं, उसके बाद परमेश्वर ने उसके लिए बहुत कुछ किया था और उसे बहुत सारे चिन्ह और आश्चर्य कर्म दिखाए थे। अब अगले 15 मिनट के लिए आइए इसे यहाँ पर रखेंगे और बहुत ही नजदीक से देखेंगे। मूसा उस स्थान पर आया जहाँ पर वो परमेश्वर ने कहा था मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारे शब्द मेरे शब्द हैं, मैंने तुम्हें इसे साबित किया है मूसा। तुमने जब उस देश में कोई मक्खियाँ नहीं थी या उसका मौसम नहीं था और तुमने कहा मक्खियाँ हो जाएं और वहाँ पर मक्खियाँ आ गई, यही सृष्टि है। धरती पर अंधेरा कौन ला सकता है सिवाय परमेश्वर के? उसने कहा वहाँ अंधेरा हो जाए और वहाँ पर अंधेरा था। तुमने कहा वहाँ मेंढक हो जाए और यहाँ तक मेंढक फिरौन के घर में थे, उसके बिस्तर में पाए गए और जब उन्होंने उन्हें एक के ऊपर एक बड़ा ढेर कर दिया। सृष्टिकर्ता, और मैंने तुम में से होकर बात की है मूसा, और मेरे शब्द के द्वारा सृष्टि को तुम्हारे होठों के जरिए से किया है। मैंने असल में तुम्हें फिरौन के सामने एक परमेश्वर बनाया है। जी हाँ श्रीमान, मैंने यह सब कुछ किया है। और यहाँ वे एक ऐसे स्थान पर आते हैं, एक छोटी सी परीक्षा वहाँ ऊपर आती है और मूसा दुहाई देना आरंभ करता है, मैं क्या करूँ? मैं चाहता हूँ आप ध्यान दें, अब ये यहाँ पर एक बड़ा सबक है, मैं इसे पसंद करता हूँ। देखो देखो मूसा, यदि हम ठीक यहाँ पर समझें तो जब ये बच्चे डरने लगते हैं, उन्होंने फिरौन को पीछे से आते देखा जो कर्तव्य के पद में था, परमेश्वर ने सब कुछ सिद्ध रूप से प्रदर्शित किया था। अब वो उनकी अपनी यात्रा को आरंभ करता है, उसके पास एकत्र कलीसिया है, वे बाहर बुलाए गए, वे हर एक संस्था से आते हैं, वे सभी एक साथ एकत्र होते हैं। मूसा वहाँ पीछे गया और कहा प्रभु मुझे क्या करना चाहिए? वो कहेगा ठीक है जाओ ऐसा करो, तो ठीक है आगे बढ़ता है। अब मूसा, तुम जानते हो कि मैंने तुम्हें ऐसा करने के लिए बुलाया है। हाँ प्रभु, तो ठीक है, जाओ और यह बोलो और ऐसा होगा, यहाँ मक्खियाँ आती हैं। इसके लिए बोलो और यहाँ यह आ जाता है, यह करो यहाँ आ जाता है। हर एक बात यहोवा यो कहता है, यहोवा यो कहता है, यहोवा यो कहता वाली बात थी। अब वो एक परेशानी में आ जाता है और परमेश्वर ने कहा, अब मैंने उन्हें लेकर उनकी यात्रा को आरंभ कर दिया है। वे सब बाहर बुलाए गए हैं, कलीसिया एक साथ है, इसलिए मैं उन्हें उनकी यात्रा के लिए ले जा रहा हूँ। अब मूसा उन्हें वहाँ पर लेकर जाता है। मैंने ये आपको बताया है, मैं बैठकर और थोड़ी देर विश्राम करूंगा। मूसा ने कहा, हे प्रभु, देखो आ रहा है, यहाँ फिरौन आता है, सब लोग, मुझे क्या करना चाहिए, मुझे क्या करना चाहिए? वहाँ देखो, क्या यह तब मनुष्य जाति नहीं है? जी हाँ श्रीमान, दुहाई देना आरंभ किया, मुझे क्या करना चाहिए? यहाँ मूसा को स्पष्ट रूप से पूरी तरह से मनुष्य के स्वभाव को देखते हैं। हमेशा ही चाहते हैं कि परमेश्वर आपके पीछे हो और आपको किसी चीज के अंदर जाने के लिए जोर डाले। अब आज हम ऐसे ही हैं। आप परमेश्वर को चाहते हैं, हमने देखा है, यह सब कुछ हमने देखा है, फिर भी आप चाहते हैं कि परमेश्वर कुछ करने के लिए आपको जोर डाले, समझे? मूसा बस आगे की ओर झुका, कहा, परमेश्वर मैं आपसे मांगूंगा, देखो आप जो कहते हैं, हाँ जी हाँ, आप इसे कहें तो ठीक है, मैं भी इसे कहूंगा, देखा? लेकिन यह परमेश्वर ने उस काम को करने के लिए ठहराया था, साबित किया कि वो उसके साथ था, और यहाँ है वो, परिस्थिति ऊपर आती है और तब वो दुहाई देना आरंभ करता है, मैं क्या कर सकता हूँ प्रभु, मैं क्या कर सकता हूँ? अब आपको याद है, उसने यहाँ पहले ही भविष्यवाणी की थी, क्योंकि उसने कहा, जिन मिस्त्रियों को तुम देखते हो, अब तुम उन्हें और नहीं देखोगे, और तब उसने तुरंत ही दुहाई देना आरंभ किया, परमेश्वर हम क्या कर सकते हैं? देखा, वहाँ उसके काम को करने के बाद, वहाँ भविष्यवाणी करने में एक बहुत अच्छा काम किया। आप देखें, उसने उन्हें बताने का काम किया कि क्या होगा। यदि परमेश्वर का वचन उसमें था तो यह उसमें था, और जब वो यह कह रहा था, यह वास्तव में पूरा होना था। उसने जो कहा वह पहले से ही पूरा होने वाला था, और यहाँ पर वो दुहाई दे रहा है, मैं क्या करने जा रहा हूँ? ओह, क्या यह मनुष्य जाति नहीं है? क्या यह मैं नहीं हूँ? क्या यह मैं नहीं हूँ? देखा, वो पहले से ही साबित कर चुका था, तू जो कहेगा वो होगा, मैं तुम्हारे साथ हूँ। और यहाँ पर कुछ ही क्षण में एक परिस्थिति ऊपर आ गई, मुझे क्या करना चाहिए, मुझे क्या करना चाहिए प्रभु? ओ प्रभु, आप कहाँ पर हो? ओह, क्या आप मुझे सुन रहे हो? मुझे क्या करना चाहिए? और उसने पहले से ही उसे ठहराया था और उसे एक प्रमाणित किया था और साबित किया और उसके जरिए से हर एक काम को किया था। और यहाँ परमेश्वर, ओ प्रभु, पूरी तरह से व्यक्त करते हुए, मनुष्य विश्राम करना चाहता है और परमेश्वर जोर दे रहा है, और फिर भी वो जानता था कि परमेश्वर ने उसे इस काम के लिए अभिषेक किया था, ऐसा करने के लिए, और परमेश्वर ने स्पष्ट रूप से उसके दावों को प्रमाणित किया था। ये लोगों के लिए छुड़ाए जाने का समय था। परमेश्वर अपने अद्भुत कामों और आश्चर्य कर्म के द्वारा उन सभी को एक झुंड में एक साथ खींच लाता है। क्या आप मुझे समझ रहे हैं? उन सभी को एक झुंड में, सभी को एक साथ लेकर आया, उनके दावों को प्रमाणित किया। वचन ऐसा कहता है, यहाँ वो चिन्ह था, यहाँ पर वो प्रमाण था, जो कुछ भी उसने कहा, तब वो उनके बीच में एक भविष्यवक्ता के रूप में आया। जब कभी भी जो कुछ भी उसने कहा, परमेश्वर ने इसका आदर किया। यहाँ तक कि सृष्टि करना और मक्खियों को लाना और उन चीजों को अस्तित्व में लाना और वो सारी चीजें जिसकी उसने उससे प्रतिज्ञा की थी, यहाँ पर वो इसे करता है। लेकिन वो यहोवा यो कहता है के लिए रुकना चाहता था। देखा, उसे जानना चाहिए था कि उसकी वही बुलावट यहोवा यो कहता है वो वाली थी। उसका काम जिसके लिए वो ठहराया गया था वो यहोवा यो कहता वाला वचन था। क्या आप इसे समझ सकते हैं? वो यहोवा यो कहता है उसके लिए क्यों रुका हुआ था? वो चाहता था, प्रभु मैं क्या कर सकता हूँ? यहाँ मैंने इन बच्चों को इतना दूर तक लाया है, यहाँ पर ऐसी परिस्थिति है, फिरौन आ रहा है, वे सब मारे जाएंगे, मुझे क्या करना चाहिए, मुझे क्या करना चाहिए? उसने पहले ही भविष्यवाणी की थी कि वे क्या करने जा रहे थे। उसने पहले ही बिल्कुल उसी तरह से बताया था ऐसा करने से क्या होगा। उसने उसी देश के अंत की भविष्यवाणी की जिसमें से वो लाया गया था। मैं आशा करता हूँ कि आप समझ रहे हैं, समझे? मूसा ने पहले ही कहा था, अब तुम उन्हें और नहीं देखोगे, परमेश्वर उन्हें नष्ट करने जा रहा है, उन्होंने तुम्हारा बहुत ही मजाक उड़ाया है, परमेश्वर उन्हें नष्ट कर देगा। उसने पहले से ही भविष्यवाणी की थी कि उनके साथ क्या होगा। तब हे प्रभु, मुझे क्या करना चाहिए? वहाँ पर मनुष्य के स्वभाव को देखा, मुझे क्या करना चाहिए? मैं यहोवा योग कहता है के लिए रुका हुआ हूँ। जी हाँ श्रीमान, मैं देखूंगा कि प्रभु क्या कहता है, तब मैं इसे करूँगा। याद रखें, एक फिरौन ने उसे पाला पोसा था जो यूसुफ को नहीं जानता था। आप जानते हैं उस समय में, ठीक उसी समय पर, देखा समझे, और मूसा ठीक वहाँ खड़े होकर और उस राष्ट्र के अंत की भविष्यवाणी की, और यहाँ पर वो ठीक उस स्थान पर था जहाँ पर यह हो रहा था। तब वह दुहाई देता है, प्रभु मुझे क्या करना चाहिए, मुझे क्या करना चाहिए। देखा, क्या यह मनुष्य की प्रकृति नहीं है? क्या यह तब मनुष्य का स्वभाव नहीं है? मैं क्या करूँ? और वो पहले से ही भविष्यवाणी कर चुका था। परमेश्वर ने जो कुछ उसने कहा उसका सम्मान किया था, और उसे उस काम को करने के लिए बुलाया गया था। तो उसे क्यों कहना है मुझे क्या करना चाहिए? वहाँ एक आवश्यकता थी, ये अब उसके ऊपर निर्भर करता है कि इसके लिए बोले। परमेश्वर चाहता था कि मूसा विश्वास के उस दान को रखे जिसे परमेश्वर ने उसे काम करने के लिए दिया था। परमेश्वर ने इसे प्रमाणित किया था, यह सच्चाई थी, और परमेश्वर चाहता था मूसा, वो लोगों को यह दिखाना चाहता था कि वह मूसा के साथ था। और वह वहाँ पीछे वो रुका रहा, उसने कहा, अब प्रभु मैं तो बस एक बच्चा हूँ, अब आप मुझे बताएं, हाँ मैं इसे करूँगा, मेरे पास यहोवा योग कहता वाला वचन है। भाई क्या यह यहोवा योग कहता है? वो है, हाँ हाँ भाई मूसा, यही यहोवा योग कहता वाला वचन है। हाँ तो ठीक है, अब हमें मिल गया है, यह यहोवा योग कहता वाला वचन है। और ये घटित हुआ, एक बार भी विफल नहीं हुआ, कभी भी विफल नहीं हुआ। और यहाँ पर ये इन परिस्थितियों में है जो फिर से ऊपर आती है। अब वो उन्हें यात्रा पर लेकर निकला, कलीसिया को पहले से ही बाहर बुलाया गया है, उन्हें यात्रा पर लेकर निकला, और वे आगे बढ़ रहे हैं। और मूसा ने दुहाई देना आरम्भ किया, प्रभु क्या ये यहोवा योग कहता वाला वचन है, मुझे क्या करना चाहिए? तो ठीक है, परमेश्वर चाहता था कि मूसा विश्वास रखे जो उसने उसमें ढाला था, उस दान में जिसे उसने स्पष्ट रूप से प्रमाणित किया था। परमेश्वर ने स्पष्ट रूप से मूसा और लोगों को यह साबित कर दिया था कि ये वो था, वचन के द्वारा और चीजों के द्वारा जिसे बोला गया वो पूरी हुई थी। इसे स्पष्ट रूप से पहचाना गया था, इसके बारे में उसे और चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं थी। देखा, इसके बारे में उसे और कुछ भी नहीं सोचना था, क्योंकि यह पहले से ही साफ हो गया था, वो पहले ही इन चीजों को कर चुका था। और उसने पहले से ही मक्खियों और पिस्सू के द्वारा साबित कर दिया था कि उसने उन चीजों को बोलकर सृष्टि की थी, कि परमेश्वर का वचन उसके अंदर था। तो यहाँ पर अब वो पूछने जा रहा है कि क्या करना है जब वो परिस्थितियाँ ठीक उसके सामने रखी होती है। समझे, ओह प्रभु, मुझे आशा है कि यह हमारे अंदर जा रहा है और हम देख सकते हैं कि हम कहाँ पर हैं। समझे, क्या इससे आपको वैसा बड़ा महसूस करने को नहीं लगाता है? मूसा के बारे में सोचते हुए, उसकी गलतियों को बताते हुए, और अपनी ओर देखो। हाँ समझे, वहाँ पर वो खड़ा हुआ है, देखो, जानता था कि वचन ने कहा था कि ऐसा होने का समय और दिन था, और जानता था कि परमेश्वर ने उससे अग्नि के स्तंभ में मुलाकात की थी, और ये ठीक लोगों के सामने घटित हुआ और इन अद्भुत कामों का प्रदर्शन किया, और उसने जो भी कहा वो सब कुछ घटित हुआ, और यहाँ तक उन चीजों को सृष्टि में लेकर आया, उन चीजों को करना जो केवल परमेश्वर ही कर सकता है, यह दिखाते हुए कि उसकी आवाज परमेश्वर की आवाज थी। और यहाँ उन लोगों के साथ परिस्थिति थी जिसे वो उठा रहा था, प्रतिज्ञा किए हुए देश की ओर ले जा रहा था, और फिर खड़े होकर दुहाई दे रहा था, मुझे क्या करना चाहिए? यह एक मनुष्य ही है जो चाहता है बस, जैसे भाई रॉय स्टॉटर, मैं विश्वास करता हूँ कि वह वहाँ दरवाजे के बाहर बैठे हुए हैं। एक समय उन्होंने मुझे बताया उस विषय में कि कोई तो मेरे साथ कुछ तो कर रहा है, और मैंने कहा ठीक है, मैंने ऐसा किया और अब ऐसा है। उसने कहा, भाई ब्रैनम, आज उन्हें आपके आगे झुकने दो और कल आप उन्हें निकाल फेंकना। और बस इसी तरह से एक मनुष्य की प्रकृति होती है, आज उन्हें आपके सामने झुकने दो और कल आप उन्हें निकाल फेंकना। ऐसा ही है, यही है जो मूसा कर रहा था। साथ ही परमेश्वर को उसे निकाल फेंकना था, उसके ठहराए जाने और इसे साबित करने के बाद ही इसे करे। और लोगों को यह कहना चाहिए था, मूसा शब्द को बोल, मैंने तुम्हें वहाँ ऐसा करते देखा है, परमेश्वर ने तुम्हारा वहाँ सम्मान किया और तुम आज भी वही हो। आमीन। देखा, इसे करो। आमीन। उसे यह जानना चाहिए था, लेकिन उसने नहीं जाना। तो ठीक है, जैसे ही ये तब था वैसे ही ये अब है। हम ऐसा देखते हैं सो उसने कहा, मूसा, परमेश्वर ने तब निश्चय ही बहुत किया था, परमेश्वर इस पर से तंग आ गया होगा। उसने कहा, तुम इस विषय में क्यों दुहाई दे रहे हो? क्या मैंने अपनी पहचान को साबित नहीं किया है? क्या मैंने तुम्हें नहीं बताया है कि मैंने तुम्हें काम को करने के लिए भेजा है? क्या मैंने तुम्हें नहीं कहा था कि जाकर ये करो? क्या मैंने प्रतिज्ञा नहीं किया था कि मैं इसे करूंगा, कि मैं तुम्हारे मुंह के साथ रहूंगा और मैं तुम्हारे जरिए से बात करूंगा और मैं इसे करूंगा और तुम चिन्ह और अद्भुत कार्य को दिखाओगे? क्या मैंने ऐसा करने की प्रतिज्ञा नहीं की? क्या मैंने बिल्कुल वैसे ही उसी तरह से नहीं किया और तुम्हारे पास के हरेक शत्रु को नष्ट नहीं किया है? और यहाँ तुम ठीक लाल समुद्र के पास अब खड़े हुए हो, कर्तव्य पथ की रेखा में मैंने तुम्हें क्या करने के लिए कहा और फिर भी तुम चिल्ला रहे हो और मेरी दुहाई दे रहे हो? क्या तुम मुझ पर विश्वास नहीं करते हो? क्या तुम नहीं देख सकते कि मैंने तुम्हें इसे करने के लिए भेजा है? ओह, क्या यह मनुष्य की प्रकृति नहीं है? ओह, सो वो बस अवश्य ही इस पर पूरी तरह से बहुत ही तंग आ गया होगा। और उसने कहा, तुम जानते हो कि तुम्हें इसकी आवश्यकता है। तुम यह जानते हो यदि तुम इन बच्चों को उस प्रतिज्ञा किए हुए देश में ले जा रहे हो। बिल्कुल ऐसा ही है, तुम यहाँ कोने में बाड़ा डाले हुए बैठे हुए हो। ऐसा कुछ भी नहीं है जो तुम कर सकते हो। तो वहाँ पर एक कमी है, तुम मेरे विषय में क्यों दुहाई दे रहे हो? तुम मेरे लिए क्यों देख रहे हो? तुम मुझे किस विषय में पुकार रहे हो? क्या मैंने लोगों को इसे साबित नहीं किया है? क्या मैंने इसे तुम्हें साबित नहीं किया है? क्या मैंने इसे नहीं बुलाया है? क्या ये वचन के अनुसार नहीं है? क्या मैंने इन लोगों को उस देश में लेकर जाने की प्रतिज्ञा नहीं की? क्या मैंने तुम्हें बुलाकर और तुम्हें नहीं बताया कि मैं इसे करूंगा? क्या मैंने तुम्हें बुलाकर और नहीं कहा कि मैंने तुम्हें इसे करने के लिए भेजा था, जो कि यह तुम नहीं थे, यह मैं था? और मैं वहाँ जाऊंगा और मैं तुम्हारे होठों के साथ रहूंगा और जो कुछ भी तुमने कहा मैं इसे प्रमाणित करता हूँ और साबित करता हूँ, क्या मैंने इसे नहीं किया है? फिर जब कोई छोटी सी चीज ऊपर आती है तो तुम बच्चे की तरह क्यों व्यवहार करते हो? तुम्हें एक पुरुष होना चाहिए, लोगों से बात कर, आमीन, उसके बाद आगे बढ़ो, आमीन। आप वहाँ हो, दुहाई मत दो, बोलो आमीन। ओह, मैं इसे पसंद करता हूँ। तुम मेरे विषय में क्यों दुहाई दे रहे हो? केवल लोगों से बातें करो और अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ो। जो कुछ भी ये हो, यदि ये बीमारी है या जो कुछ भी ये है, मुर्दों को जीवित करना या जो कुछ भी ये है, बोलो मैंने इसे साबित किया है। लोगों से बात करो, क्या ही एक सबक है, क्या ही एक सबक है। ओह प्रभु, इस यात्रा के इस चरण में जहां हम खड़े हैं, देखो हम अब कहां पर हैं? जी हां श्रीमान, तीसरे खिंचाव पर। ध्यान दे, हम ठीक वहां द्वार पर हैं, प्रभु के आगमन पर। उसे काम को करने के लिए अभिषेक किया गया था और फिर भी यहोवा यह कहता है उसके लिए वो रुका हुआ था। परमेश्वर ने तब निश्चय ही बहुत किया था। उसने कहा, अब और दुहाई मत दो, बोलो मैंने तुम्हें भेजा है। ओ परमेश्वर, इस कलीसिया को आज सुबह क्या होना चाहिए? परमेश्वर के सिद्ध प्रमाण के साथ, अग्नि के स्तंभ के साथ और वे चिन्ह और आश्चर्य कर्म के साथ, सब कुछ ठीक वैसे ही उसी तरह जो सोदम के दिनों में था। उसने कहा ये वापस होगा। यहाँ संसार उसकी परिस्थिति में है, वहाँ राष्ट्र उसके परिस्थिति में है, महिलाएं उसकी परिस्थिति में है, पुरुष उसके परिस्थिति में है, कलीसिया उसकी परिस्थिति में है, वहाँ सब कुछ, वे तत्व, चिन्ह, उड़ने वाली तस्करी और आकाश में की हर एक चीज और सभी प्रकार की रहस्यमयी चीजें और समुद्र का उफान, ज्वारीय लहरें, मनुष्य के हृदय का दौरा, भय, समय का पेचीदा होना, राष्ट्रों के बीच संकट, कलीसिया बिखर रही है और पाप का पुरुष उठ रहा है और अपने आप को सबसे ऊपर रखता है, जिसे परमेश्वर कहा जाता है, वो जो परमेश्वर के मंदिर में बैठता है, खुद को प्रदर्शित करता है। ओह प्रभु, और इस राष्ट्र में आना है और कलीसिया संगठित हो चुकी है और वे सभी एक साथ इकट्ठे हुए हैं, जैसे वैश्य वैश्यावृत्ति के लिए, और सब कुछ बिल्कुल वैश्यवृत्ति के रास्ते में है। वैश्यवृत्ति ये क्या है? महिलाओं को बताना कि वे अपने बालों को काट सकती हैं, महिलाओं को बताना छोटे कपड़े पहन सकते हैं, पुरुषों को बताना कि वे ऐसा कर सकते हैं और वे वैसा कर सकते हैं, और वे प्रचारक वे इसे करते हैं, और एक सामाजिक सुसमाचार और इत्यादि। क्या आप नहीं देखते यह परमेश्वर के सच्चे वचन के साथ वह विचार करना है? और परमेश्वर ने हमें अपना सच्चा वचन भेजा है, जो संस्थापक नहीं है, इसके साथ कोई तार नहीं जुड़ी हुई है और हमें अग्नि का स्तंभ देता है पवित्र आत्मा जो अब हमारे साथ 30 वर्षों से रहा है और हर एक चीज जो उसने भविष्यवाणी की है और कहा है यह ठीक उसी तरह से पूरी होनी है जिस तरह से उसने इसे बताया। लोगों से बोल और आगे की ओर बढ़। आमीन। हमारे पास एक लक्ष्य है, वह महिमा है। आइए इसकी ओर बढ़े। हम प्रतिज्ञा किए हुए देश की ओर अग्रसर हुए हैं। उन विश्वास करने वालों के लिए सारी बातें संभव है। लोगों से बोल, क्या मैंने इसे साबित नहीं किया है? क्या यहाँ तक मैंने तुम्हारे बीच मेरी एक छवि को नहीं बनाया है और बाकी सब कुछ नहीं किया है जो किया जा सकता था ये साबित करने के लिए कि मैं तुम्हारे साथ हूँ? क्या पत्रिकाओं में कुछ सप्ताह पहले लेख को नहीं छापा था जब आपने यहाँ पुलपिट पर कहा था और यहाँ पर क्या घटित होगा यहाँ बाहर रखना और 3 महीने पहले ही? और क्या वहाँ पर यह प्रमाणित हो रहा था और प्रमाणित हुआ? यहाँ तक कि विज्ञान भी इसके बारे में जानता है और जो कुछ मैंने कहा है और आप अब भी रुके हुए हैं। लोगों से बोल और अपने उद्देश्य की ओर आगे बढ़। आमीन। क्या नातान ने दाऊद को नहीं बताया? नातान वो भविष्यवक्ता एक बार बैठकर दाऊद अभिषिक्त राजा को देख रहा था। उसने कहा जो कुछ तुम्हारे हृदय में है वो करो क्योंकि परमेश्वर तुम्हारे साथ है। दाऊद को बताया जो कुछ तुम्हारे हृदय में है वो करो क्योंकि परमेश्वर तुम्हारे साथ है। यहोशू को अभिषेक किया गया था परमेश्वर और उसके लोगों के लिए देश को ले लो। दिन छोटा था, उन्हें काम करने के लिए और अधिक समय चाहिए था जिसे उसे करने के लिए अभिषेकित और अधिकार दिया था। यहोशू एक पुरुष, वो अभिषेकित था। परमेश्वर ने उससे कहा जैसे मैं मूसा के साथ था मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। आमीन। वो देश मैं उन्हें देने जा रहा हूँ और मैं चाहता हूँ कि तुम वहाँ जाकर अमेलिकियों लोगों को साफ कर दो और वो बाकी सभी को फिलिस्तीनियों और परिजियों और सभी विभिन्न लोगों को उन्हें साफ कर दो। मैं तुम्हारे साथ हूँ। तेरे जीवन भर कोई तेरे सामने ठहर न सकेगा। कोई भी मनुष्य तुम्हें परेशान नहीं कर सकता है। वहाँ आगे बढ़ो। और यहोशू ने उस तलवार को खींचा और कहा मेरे पीछे चलो और वो वहाँ पर गया और यहाँ पर वो लड़ रहा था। और ये क्या था? उसने दुश्मन को पूरी तरह से हरा दिया। वे यहाँ पर छोटे झुंड थे और वहाँ पर छोटे झुंड थे। जब रात का समय आता तो वे सभी एक साथ इकट्ठे हो जाते और एक साथ रक्षा करते और उसके खिलाफ एक साथ बड़ी ताकत के साथ आते थे। और सूरज नीचे जा रहा था, उन्हें और अधिक प्रकाश की आवश्यकता थी। सूरज नीचे जा रहा था। वह अपने घुटनों पर गिरकर और नहीं कहता है प्रभु परमेश्वर मैं क्या करूं मैं क्या करूं। उसने बोला, उसे एक आवश्यकता थी। उसने कहा सूरज थम जा। उसने किसी भी चीज की दुहाई नहीं दी, उसने आदेश दिया सूर्य थम जा, मुझे इसकी आवश्यकता है। मैं प्रभु का दास हूँ, इस काम को करने के लिए अभिषेकित और मुझे एक आवश्यकता है। थम जाओ और तुमको चमकना और सूर्य तुम जहाँ पर हो वहीं ठहरे रहो। जब तक उसने युद्ध को लड़ नहीं लिया और सारी चीजों को खत्म नहीं कर दिया और सूर्य ने उसकी आज्ञा का पालन किया। कोई दुहाई देना नहीं, उसने सूरज से बातें की, कहा तुम वहीं थम जाओ वहीं ठहरे रहो और चंद्रमा तुम जहाँ पर हो वहीं ठहरे रहो। उसने दुहाई नहीं दी, प्रभु अब मैं क्या कर सकता हूँ, मुझे कुछ और सूरज का प्रकाश दो। उसे सूरज के प्रकाश की आवश्यकता थी इसलिए उसने आज्ञा दी और सूर्य ने उसकी आज्ञा का पालन किया। ओह प्रभु, उसने सूरज को वहीं थमे रहने की आज्ञा दी। शिमशोन अभिषेकित था, वो बढ़ने लगा। परमेश्वर का ठहराया हुआ, उसे सामर्थ का दान था। फिलिस्तियों के राष्ट्र को नष्ट करने के लिए ठहराया गया था। ठहराया गया परमेश्वर का अभिषेक फिलिस्तियों को नष्ट करने के लिए पृथ्वी पर जन्म हुआ परमेश्वर का अभिषेकित। और एक दिन उन्होंने उसे वहाँ पर उस भूमि में पकड़ लिया। वो बिना तलवार के था, बिना एक भाले के, और वे हजारों हथियार लिए हुए फिलिस्तीनी एक ही समय में उसकी ओर दौड़कर आने लगे। क्या वो नीचे झुककर कहने लगा हे प्रभु मैं एक दर्शन के लिए रुका हुआ हूँ, हे प्रभु मुझे क्या करना चाहिए, मुझे अभी निर्देशित करें कि क्या करना है। वह जानता था उसे कुछ आवश्यकता थी। उसे वहाँ एक खच्चर के पुराने जबड़े के अलावा कुछ भी नहीं मिला और उसने 1000 फिलिस्तियों को मार गिराया। आमीन। उसने कभी भी परमेश्वर के लिए दुहाई नहीं दी, उसने अपने अभिषिक्त दान का इस्तेमाल किया। वो जानता था कि उसे उस काम को करने के लिए भेजा गया था। वो जानता था कि उसने उसके लिए जन्म लिया था। वो जानता था उसे एक दान के साथ अभिषेक किया गया था। और उसने 1,000 पलिस्तियों को मार गिराया। उसने परमेश्वर के लिए दुहाई नहीं दी थी। परमेश्वर ने उसे ठहराया और प्रमाणित किया कि वह था अन्य चीजों के द्वारा जिसे उसने किया था, और वह परमेश्वर का प्रमाणित और अभिषेकित सेवक था कि और परिस्थितियों को नाश करे, और उसने इसे किया। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि परिस्थितियां क्या थी, उसने इसे किया। उसने कुछ भी नहीं मांगा, वह उसका काम था। वो परमेश्वर उसके जरिए से व्यवहार कर रहा था, उस खच्चर की हड्डी उठाकर और फलिस्तियों को मारने के लिए बड़ा। कैसे? क्योंकि उस चीज, उस खोपड़ी से एक चाटना होता है, उसमें हर एक के ऊपर 1.5 इंच का पीतल की खोपड़ी होती है। उस हड्डी के 1,000,000 टुकड़े होकर चूर चूर हो जाते, और उसने उस खोपड़ी से उनमें से 1,000 को मारा और उन्हें मार डाला, और अब भी उसके हाथ में इसे लेकर खड़ा था। उसने सवालों को नहीं पूछा, उसने दुहाई नहीं दी, उसने बोला, उसने उन्हें हरा दिया। ओह प्रभु, फलिस्ती को जीतना, क्या मैं फलिस्तियों को जीत सकता हूँ प्रभु? मैं जानता हूँ कि आपने मुझे इसे करने के लिए भेजा है प्रभु। हाँ प्रभु, मैं जानता हूँ कि आपने मुझे फलिस्तियों के इस देश को नष्ट करने के लिए भेजा है। अब यहाँ उनमें से मेरे चारों ओर हजारों हैं और मेरे पास कुछ भी नहीं है, क्या मैं अब क्या करूँ प्रभु? ओह प्रभु, उसे कोई भी परेशानी नहीं थी, उसे उस काम को करने के लिए अभिषेकित किया था। तुम्हें कोई भी हानि नहीं पहुंचा सकता है, नहीं, एक चीज भी नहीं। हालेलुया। उसने बस उसे उठा लिया जो उसके पास था और उन पर मारने लगा था। यह सही है। जब शत्रु ने उसे घेर लिया, कहा अब हम उसे दीवारों में बंदी बना देंगे, हमने उसे अब पा लिया है, हमने उसे इस स्त्री के साथ अंदर पाया है, अब हमने दरवाजे बंद कर दिए हैं हर कहीं चारों ओर से, और वो बाहर नहीं निकल सकता है, हमने उसे पकड़ लिया। शिमशोन ने दुहाई नहीं दी, हे प्रभु, उन्होंने मुझे इस संप्रदाय के साथ पूरी तरह से घेर लिया है। ओह, मैं क्या करूं? मैं उनसे घिर गया हूं, मैं क्या करूं? उसने कभी ऐसा नहीं किया, वह बस बाहर चल कर गया और फाटकों को खींच निकाला और उसे अपने कंधे पर रख दिया और उसके साथ बाहर निकल गया। आमीन। उसे उस काम को करने के लिए अभिषेक किया गया था, वो परमेश्वर के द्वारा बुलाया गया था। उसको अंदर से घेरा नहीं था, नहीं, वास्तव में वो अपने साथ फाटकों को उठा कर ले गया। उसने इसके बारे में प्रार्थना नहीं की थी, उसने परमेश्वर से नहीं पूछा कि यह करना है या नहीं, यह ठीक कर्तव्य की रेखा में था। आमीन, 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 ठीक कर्तव्य की रेखा में। तो क्यों मेरी दुहाई देता है? बोल और आगे बढ़। आमीन, दुहाई मत दो, बोलो। वो अब शिकायत करना और बच्चों की तरह रोना छोड़ चुका था। शब्द को बोलने के लिए उसे ऐसा होना है, यह सही है। वो जानता था कि उसका अभिषिक्त सामर्थ का दान उसके सामने खड़े किसी भी फिलिस्तीनी को नष्ट कर सकता है। आमीन। लेकिन हम यह नहीं जानते, आप देखते हैं, हम अभी भी छोटे बच्चे ही हैं और हमारे मुंह में एक बोतल के साथ हैं। वो उसे जानता था, वो जानता था कि परमेश्वर ने उसे उस उद्देश्य के लिए बड़ा किया है, और उसके जीवन के सारे दिनों में उसके सामने कोई भी नहीं खड़ा होना था, कोई भी उसे नष्ट नहीं कर सकता। वो उस उद्देश्य के लिए बड़ा हुआ था जैसे कि मूसा था, उसे कोई भी नहीं रोकेगा, कोई अमेली या कोई और उसे रोक नहीं सकता है। वह प्रतिज्ञा किए हुए देश के मार्ग पर है। शिमशोन जानता था कि वो मार्ग पर था, यहोशू जानता था कि वह देश पर कब्जा करने जा रहा था, वो प्रमाणित हुआ था, परमेश्वर के वचन ने इसकी प्रतिज्ञा की है और पवित्र आत्मा वहाँ इसे प्रमाणित कर रहा था। वो उसके मार्ग पर था, इसलिए कोई भी उसके मार्ग में खड़ा नहीं होना था, नहीं श्रीमान, परमेश्वर के साथ ठीक कर्तव्य पद की रेखा में कोई भी उसके मार्ग में नहीं खड़ा होना था। तो उसने बस फाटकों को उठाया और उसे अपने कंधे पर रख दिया जो लगभग 4 या 5 टन के वजन के थे, और पहाड़ी के चोटी पर चलकर गया और उन पर बैठ गया। उसके रास्ते में कोई भी नहीं खड़ा होगा, उसके पास परमेश्वर से अभिषिक्त दान था, उसे दुहाई नहीं देना पड़ा था, प्रभु अब मुझे क्या करना चाहिए? वो पहले से ही इसे करने के लिए अभिषेक किया गया था। यही वो यहोवा यो कहता है वाला वचन था, उनसे पीछा छुड़ाओ। हालेलुया, उनसे पीछा छुड़ाओ। मैंने तुम्हें इसी उद्देश्य के लिए ऊपर लाया है। आमीन। मुझे क्या करना चाहिए प्रभु? तो ठीक है, मैं यहाँ लाल समंदर पर क्या करूँ? क्या मैंने तुम्हें यह नहीं बताया कि मैं तुम्हें यहाँ एक चिन्ह के लिए पहाड़ को देता हूँ? तुम उस पहाड़ पर वापस आ रहे हो और तुम इन बच्चों को देश पर लेकर जा रहे हो। क्या मैंने तुम्हें उस उद्देश्य के लिए नहीं बुलाया? तो तुम मार्ग में खड़ी किसी भी चीज के बारे में क्यों चिंतित हो? बोलो और आगे बढ़ना आरम्भ करो। आमीन और आमीन। हाँ, मैंने तुम्हें इसी उद्देश्य के लिए बुलाया है। दाऊद, वो जानता था वह अभिषिक्त था और एक अच्छा निशाना मारने के लिए प्रमाणित हुआ था। वह जानता था कि वे जानते हैं कि वो एक अच्छा निशानेबाज था। दाऊद अभिषिक्त किया गया था, वह इसे जानता है। और जब वह गोलियत के सामने खड़ा था, उसने कभी दुहाई नहीं दी, हे परमेश्वर अब मुझे क्या करना चाहिए। रुको, मुझे मैं जानता हूँ कि आपने बीते समय में क्या किया था। आपने मुझे भालू को मारने दिया, आपने मुझे एक शेर को मारने को दिया, लेकिन यहाँ इस गोलियत के बारे में क्या। उसने कभी भी इसे नहीं किया था, वो केवल बोला। उसने क्या कहा, तुम्हारा भी उसी तरह से हर्ष होगा जैसे उनके साथ। वो बोला और आगे बढ़ा। उसने कभी भी प्रार्थना नहीं की, उसने कभी भी भेंट नहीं चढ़ाई थी। वह जानता था कि वो अभिषेकित था। आमीन। वो अभिषेकित था और उस गुलेल ने सही एक चीज को साबित किया था। उसके पास उसके अभिषेक में विश्वास था। उसके पास विश्वास था कि परमेश्वर उस पत्थर से सीधे वहाँ उसके सिर के टोप के बीच में निशाना कर सकता है, एकमात्र स्थान जहाँ मारा जा सकता है। वो वहाँ पर खड़ा था, वह जानता था कि वह एक अच्छा निशानेबाज था। आमीन। वो जानता था कि परमेश्वर ने उसे ऐसा बनाया है। आमीन। वो जानता था कि उसने शेर को मारा था। वो जानता था कि उसने एक भालू को मारा था, लेकिन यह उसके धरती के पिता के अधिकार के साथ था। यहाँ उसका स्वर्गीय पिता का अधिकार है। आमीन। वह हताश नहीं हुआ, कहा क्या अब मुझे क्या करना चाहिए प्रभु। उसने बोला और कहा, तुम शेर और भालू की नहीं होंगे और यहाँ मैं आता हूँ। आमीन। परमेश्वर की महिमा हो। जी हाँ श्रीमान। वो बोला और गोलियत के आमने सामने होने के लिए आगे बढ़ा। ओह प्रभु, उसके आकार के बावजूद वो एक छोटा सा गुलाबी सा दिखने वाला व्यक्ति था। आप जानते हैं, वह बहुत बड़ा नहीं था, वो दिखने में बहुत ही रूपवान नहीं था, एक छोटे से कद के ढांचे का व्यक्ति। बाइबल ने कहा कि वो गुलाबी सा दिखने वाला था। अब उसके कद और उसके ऐसा करने की योग्यता को ध्यान में रखने के बावजूद, आप जानते हैं बिशप ने उसे बताया, कहा अब यहाँ देखो पुत्र, ये व्यक्ति एक धर्म ज्ञानी है। देखो वह एक योद्धा है, वह एक योद्धा जन्म लिया था और वह अपने युवावस्था से एक योद्धा रहा है और तुम्हारा उसके साथ कोई मुकाबला नहीं है। और उसके भाइयों ने कहा, ओह तुम शरारती चीज हो, यहाँ आकर इस तरह की चीज को करना, घर को वापस जाओ। उससे वो परेशान नहीं हुआ, क्यों? वह जानता था कि वह अभिषिक्त था। जिस परमेश्वर ने मुझे उस शेर से छुटकारा दिया, वह परमेश्वर जिसने मुझे उस भालू के पंजे से छुटकारा दिया, वो उससे कहीं अधिक है, मुझे उस फिलिस्तीनी से छुटकारा करेगा। मैं यहाँ आया हूँ, मैं इज़राइल के प्रभु परमेश्वर के नाम से तुम्हारे पास आया हूँ। आमीन। उसने प्रार्थना नहीं की थी, वो पहले ही प्रार्थना कर चुका था। परमेश्वर ने उससे उसमें से होकर दुनिया की नींव डालने से पहले प्रार्थना की। वो उस काम को करने के लिए अभिषेकित था, उसे बोलना था और आगे बढ़ना था। इसके विषय में यही सब करना है, केवल बोलो और आगे बढ़ो। ओह इसके लिए वहाँ ऐसा ही था। ओह उसने नहीं, उसके सांप्रदायिक भाइयों के बारे में, वे ठट्टा उड़ाने वाले भी वहाँ खड़े थे, आप जानते हैं। ओह हाँ, वे वहाँ पर खड़े होकर कह रहे थे, ठट्टा उड़ा रहे थे और मजाक कर रहे थे और कह रहे थे, उसके भाई आप जानते हैं, और कहते हाँ हाँ हाँ, तुम नहीं कर सकते, तुम बस शरारती हो। उससे उसे जरा भी फर्क नहीं पड़ा, तुम किसी और से अलग ही बनना चाहते हो, तुम बस दिखाना चाहते हो। यदि यह दिखावा हो रहा था तो ऐसा ही होता, लेकिन उन्होंने केवल बौद्धिक पक्ष को देखा। दाऊद जानता था कि अभिषेकित तेल उसके ऊपर था। आमीन। उसे उससे कोई फर्क नहीं पड़ा, उसने कहा वो फिलिस्ती भालू और शेर की तरह होगा, इसलिए मैं आया हूँ। उसने ऐसा होने से पहले भविष्यवाणी की थी। उसने क्या किया, उसने भालू को मार डाला, उसने शेर को मार डाला, उसने शेर को उससे नीचे गिरा दिया, किससे, गुलेल से, और एक चाकू को लिया और उसके बाद भालू को, शेर, उसने एक चाकू से शेर को मार डाला। इसी तरह से उसने गोलियत के साथ किया था, उसने उसे पत्थर से नीचे गिरा दिया और उसकी तलवार को बाहर निकाला और उसी के सिर को काट दिया ठीक उनके सामने। ऐसा होने से पहले उसने क्या भविष्यवाणी की, और तुम्हारा भी वैसा ही हाल होगा जैसे उनका हुआ है। क्यों? उसने इस शब्द को कहा कि ऐसा होगा और उसके बाद इसे पूरा करने के लिए आगे बढ़ा। आमीन। ओह भाई, उसने बोला और उस दिन स्थिति को संभाला। यदि कभी कोई ऐसा समय था जब मनुष्य को बोलना चाहिए, तो वो अभी है। बंद करते हुए बस अगले कुछ मिनट में, यदि आप बस कुछ मिनट और धीरे धर सकते हैं, मैंने यहाँ कुछ और बातें लिख कर रखी है, कुछ वचन जो मैं लेना चाहता हूँ। पतरस ने कभी दुहाई नहीं दी जब उसने एक ऐसे मनुष्य को पाया जिसके पास चंगा होने के लिए पर्याप्त विश्वास था, जो सुंदर नामक फाटक पर पड़ा हुआ था। उसने कभी भी आकर और सारी रात प्रार्थना नहीं की और पूरे दिन प्रार्थना नहीं की, एक बड़ी लंबी प्रार्थना, कहा हो प्रभु मैं अब प्रार्थना करता हूँ कि आप इस गरीब लंगड़े मनुष्य की सहायता करेंगे। मैं देखता हूँ कि उसके पास विश्वास है, मैं जानता हूँ कि वो एक विश्वासी है और मैंने उससे पूछा है और वो उसने कहा कि उसे विश्वास था, वो विश्वास करेगा कि मैंने उसे जो बताया है और मैंने उसे उसके बारे में बताया है जो आपने किया है। और मैं अभी सोचता हूँ प्रभु कि क्या आप मुझे यहोवा योग कहता वाला वचन इसके लिए दे सकते हो। नहीं, वह जानता था कि वो अभिषिक्त प्रेरित था, वो जानता था कि यीशु मसीह ने उसे अधिकार दिया था, बीमारों को चंगा करो, मुर्दों को जिलाओ, कुष्ठ रोगी को शुद्ध करो, शैतानों को बाहर निकालो, जैसा कि आपको मुफ्त में मिला है मुफ्त में तुम दे दो। उसने कहा पतरस जाकर इसे करो, उसे प्रार्थना करने की आवश्यकता नहीं पड़ी थी, उसे अधिकार दिया गया था। उसने क्या कहा? उसने कहा यीशु मसीह के नाम में, उसने यीशु मसीह के नाम को बोला और वो मनुष्य बस वहीं पर पड़ा था और उसने उसे हाथ से उठाया और कहा अपने पैरों पर खड़े हो जाओ। और उसने तब तक उसे पकड़े रखा जब तक उसके टखने की हड्डियों में ताकत नहीं मिली और उसने चलना आरंभ कर दिया। क्यों? उनकी कोई भी रात भर की प्रार्थना सभा नहीं हुई थी, उसने कभी भी परमेश्वर की दुहाई नहीं दी। वह यीशु मसीह के होठों से सकारात्मक जानता था, उसे इस काम को करने के लिए अभिषेक किया गया था। जी हाँ, उसने बोला और उसे ऊपर उठाया क्योंकि वो जानता था कि वो इस उद्देश्य के लिए अभिषिक्त प्रेरित था। जो लोग उसकी छाया में पड़े हुए थे उन्होंने कभी भी नहीं कहा हे प्रेरित पतरस आकर और हमारे लिए दुहाई दो और हमारे लिए विश्वास की परमेश्वर से प्रार्थना करो। नहीं नहीं, उन्होंने कभी ऐसा नहीं कहा। वे जानते थे कि वो अभिषिक्त और परमेश्वर का प्रमाणित एक प्रेरित था। सो उन्होंने कहा आओ हम केवल उसकी छाया में पड़े रहें। आपको एक शब्द भी नहीं कहना है, हम इसे जानते हैं, हम इसे विश्वास करते हैं। उनके अंदर जीवन होता है। प्रेरित उन सभी तक नहीं पहुंच पाया और वे खुद वे इसके एक भागीदार हैं। मूसा ने कहा यह केवल मैं नहीं जा रहा हूँ, हम सब जा रहे हैं, हम सबके पास करने के लिए कुछ है, हम सभी को अभिषेक किया जाना है। और उन्होंने देखा कि प्रेरित वहाँ पर खड़ा था और उसे बीमार मनुष्य को चंगा करते देखा और उसने उन चीजों को किया। वे जानते हैं कि वो उन तक नहीं पहुंच सकते। कहा उन्होंने कभी नहीं कहा पतरस यहाँ आओ और प्रार्थना करो और हम अब रुके हुए हैं जब तक कि तुम्हें यहोवा योग कहता वाला वचन नहीं मिलता है और आकर मुझे बताओ देखें कि प्रभु क्या कहता है। उन्होंने कहा यदि हम केवल उसकी छाया में ही पड़े रह सकते हैं क्योंकि वही परमेश्वर जो यीशु मसीह में था वो उसके अंदर है और हम वही काम को करते हुए देखते हैं। इसलिए उन्होंने यीशु के वस्त्र के किनारे को छुआ और उसकी छाया में पड़े हुए हैं और यीशु इस मनुष्य में है। यदि वो छाया हमारे ऊपर प्रतिबिंबित हो सकती है तो हम चंगे हो जाएंगे। और बाइबल ने कहा कि उनमें से हर एक जन चंगा हो गया था। न ही सारी रात की प्रार्थना सभा कहते हुए प्रभु क्या मैं इस प्रेरित की छाया में लेट जाऊं? नहीं, वे उसे जानते थे। उजियाला उन पर चमका था, उनके हृदय पूर्ण रूप से भर गए थे, उनके विश्वास ने आजाद कर दिया। आमीन। उन्होंने इसे विश्वास किया, उन्होंने इसे देखा था। वैसे ही पौलुस के रुमाल अब बंद करते हुए यीशु ने कभी भी दुहाई नहीं दी जब उन्होंने पागल लड़के को उसके पास लाया जो मुर्गी थी आग में गिर रहा था। उसने कभी नहीं कहा हे पिता मैं आपका पुत्र हूँ और अब आपने मुझे ऐसा ऐसा और ऐसा करने के लिए यहाँ भेजा है, क्या मैं इस लड़के को चंगा कर सकता हूँ? उसने कभी नहीं कहा। उसने कहा उसमें से बाहर निकल शैतान। उसने बोला और लड़का ठीक हो गया था। जब वो उस सेना से मिला जो उनमें 2000 शैतानों के साथ थी, ये यीशु दुहाई नहीं दे रहा था, ये तो शैतान दुहाई दे रहे थे। क्या आप हमें बाहर निकालेंगे? ओह प्रभु हमें अनुमति दे ताकि हम उस सुअर के झुंड में चले जाएं। यीशु ने कभी नहीं कहा अब पिता क्या मैं ऐसा करने में सक्षम हूँ? उसने कहा उसमें से निकल जा। और शैतानों ने अपनी उड़ान को लिया। निश्चय ही वह जानता था कि वो मसीहा था। लाजरस की कब्र पर वह 4 दिन से मरा हुआ था। उन्होंने कहा यदि तू यहाँ पर होता प्रभु वो नहीं मरता। उसने कहा मैं पुनरुत्थान और जीवन हूँ। आमीन। नहीं, कहाँ, कब या कैसे? वो जो मुझ पर विश्वास करता है यदि वह मर भी चुका है फिर भी वह जी उठेगा। आमीन। वो जानता था कि वह कौन था, वह जानता था कि वह क्या था, वह जानता था कि वह इमैनुअल था, वो जानता था कि वह पुनरुत्थान था, वो जानता था कि वह जीवन था, वो जानता था कि उसमें परमेश्वर की देह परिपूर्णता में वास करती है। उसने वहाँ उन छोटे से लोगों को देखा और उसने देखा था कि परमेश्वर ने उसे तब क्या करने के लिए कहा था, और वहाँ पर वो था, वो वहाँ पर चला गया। उसने कभी नहीं कहा अब रुको, मैं यहाँ पर घुटने टेकूंगा, आप सभी घुटने टेके और प्रार्थना करें। उसने कहा तुम विश्वास करते हो कि मैं इसे करने में सक्षम हूँ, आमीन। उसने इसके लिए पूछा, ये वह नहीं था, ये तो वे थे। हाँ प्रभु, मुझे विश्वास है कि आप परमेश्वर के पुत्र हो जिसे संसार में आना था। ओह प्रभु, वहाँ उसकी पहचान हुई थी, कुछ तो घटित होना है। लाजरस बाहर आ, उसने बोला, और एक मृत व्यक्ति बाहर आ गया। ना ही क्या मैं कर सकता हूँ, उसने केवल बोला। जब विश्वास मिल गए थे तो बात घटित हुई। वो बोलता है, वो बोला और अंधे ने सुना, लंगड़े चलने लगे, बहरों ने सुना, शैतान चिल्लाने लगे और बाहर निकले, मुर्दे जीवित हो गए, हर एक चीज। क्यों? उसने प्रार्थना नहीं की। वो अभिषेकित मसीहा था, वो वही मसीहा था, वो जानता था कि वो था, वो अपने स्थान को जानता था, वो जानता था कि उसे क्या करने के लिए भेजा गया था, वो जानता था कि पिता ने विश्वासियों के लिए उसकी मसीहा होने की पहचान को दिया था। और जब विश्वास के साथ उन विश्वासियों से मिला तो उसने केवल शब्द को बोला, शैतान तितर बितर हो गया। जी हाँ श्रीमान, बोलो, दुहाई मत दो, बोलो आमीन। और वो उसके परमेश्वर के लिए अधिकारों को जानता था, लेकिन हम नहीं जानते। वो जानता था कि वो क्या था, हम नहीं जानते। मूसा भूल चुका था, शिमशोन समझता था, दूसरों ने समझा, यहोशू समझ गया, मूसा भूल गया। परमेश्वर ने उसका ध्यान इसकी ओर दिलाना था। उसने कहा, तुम मेरे लिए क्यों दुहाई दे रहे हो, मैंने तुम्हें उस काम को करने के लिए भेजा है, बोलो और अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ो। मैंने तुम्हें बताया था कि तुम इस पहाड़ पर आओगे, उन बच्चों को लेकर और उन्हें आगे लेकर जाओ, केवल बोलो, मैं परवाह नहीं करता कि तुम्हारे रास्ते में क्या है, इसे रास्ते से हटा दो, मैं तुम्हें इसे करने का अधिकार देता हूँ। मैंने बोला, तुमने मक्खियों और पिस्सू को बोला और सृष्टि की और इस तरह की चीजों को किया, अब तुम मेरे विषय में क्यों चिल्ला रहे हो, तुम मेरे पास आकर इन चीजों को चिल्ला रहे हो, केवल बोलो और इसे होते हुए देखो, बस इतना ही है। ओह प्रभु, ओह मैं इसे कितना पसंद करता हूँ। यहाँ यीशु जो कुछ उसने कहा, उसने केवल शब्द को बोला और ये हो गया था। परमेश्वर ने उसे सही तरह से उसे अपना पुत्र होने के लिए प्रमाणित किया था। यह मेरा प्रिय पुत्र है जिसमें रहने से मैं बहुत प्रसन्न हूँ, उसकी सुनो, उसे देखो, मुझे यह पसंद है। कितनी हिम्मत से वो किस तरह अपने निंदकों के सामने खड़ा हुआ था। आमीन। उसने कहा, इस मंदिर को ढा दो और मैं पिता से प्रार्थना करूंगा और देखूंगा कि वह इसके विषय में क्या कहता है। इस मंदिर को ढा दो और मैं इसे 3 दिनों में फिर से खड़ा करूंगा। ना ही मैं आशा करता हूँ, मैं इसके लिए कोशिश करूंगा, मैं इसे करूंगा। क्यों? वचन ऐसा कहता है, वही वचन जो कहता है कि वो अपनी देह को जिलाएगा, हमें अधिकार को देता है, उस सामर्थ को। आमीन। मेरे नाम से वे शैतानों को बाहर निकालेंगे, वे नई नई भाषाओं को बोलेंगे, यदि वे सांपों को उठा लेते हैं या घातक वस्तु को पी लेते हैं तो इससे उन्हें कोई हानि न होगी, यदि वे बीमारों पर अपने हाथ को रखते हैं तो वे चंगे हो जाएंगे। मेरे निमित्त क्यों दुहाई देता है, बोल और आगे बढ़। ओह हिम्मत से मैं इस मंदिर को ढा दो, मैं इसे फिर से खड़ा करूंगा। ओह और अब याद रखें, हम बंद कर रहे हैं, ये वही वो था, ये वो था जिसने यूहन्ना 14:12 में कहा, वो जो मुझ पर विश्वास करता है, जो काम मैं करता हूँ वो भी करेगा। क्या यह सही है? ये वो ही था जिसने ऐसा कहा। यह मरकुस 11:24 में यीशु था। उसने कहा, यदि आप इस पहाड़ से कहो, ना ही यदि तुम इस पहाड़ से प्रार्थना करो, यदि तुम इस पहाड़ से कहो हट जा और अपने हृदय में संदेह न करो, लेकिन विश्वास करो कि जो तुमने कहा है वह पूरा हो जाएगा, तुम्हारे पास हो सकता है जो तुमने कहा है। अब आप यदि आप इसे बस ऐसे ही मान लेते हैं तो ऐसा नहीं होगा। लेकिन यदि आपके अंदर कुछ तो है, आप उस काम को करने के लिए अभिषेकित हैं और ये जानना है कि यह इसे करने के लिए परमेश्वर की इच्छा है और वो इसे बोलेगा, ऐसा होना ही है। यदि तुम ये वो ही था जिसने इसे कहा था, यदि तुम मुझ में बने रहते हो और मेरा वचन तुम में बना रहता है, तुम जो चाहो और ये तुम्हारे लिए हो जाएगा। ओह प्रभु, ओह प्रभु, आप समझे मेरा क्या मतलब है? इसके लिए क्षमा करें, लेकिन यह अभी मेरे अंदर आ रहा है, मुझे यह कहना है। ये वो ही था, उसने कहा वहाँ उस दिन पर उस जंगल के अंदर तुम्हारे पास कोई शिकार नहीं है, और उसने हमारे सामने खड़ी तीन गिलहरियों की सृष्टि की। क्या है ये? केवल शब्द बोलते हुए कहा वे वहाँ पर होंगी, और वहाँ और वहाँ और वहाँ पर वे थी। ये वही था जिसने इसे किया था। चार्ली, रॉडनी, ये वही था जो वहाँ केंटकी में था, और नेली, मार्गी और बाकी के आप लोग, ये वही था, वही परमेश्वर जो वहाँ पहले था और मूसा से बात करता था, और उसने कहा तू मेरी दुहाई क्यों देता है, शब्द को बोल। ये वही था जो उन्हें अस्तित्व में लाया, ये वो ही था, यह वही है। ओह प्रभु, ये वही था जिसने एक वर्ष पहले दर्शन को दिया था, उसने कहा कि हम वहाँ पर जाएंगे, और ये सात मोहरें और किस तरह से एक बड़ी गर्जन जो इसे आरंभ कर देगी, और वे एक पिरामिड के आकार में होंगे, और वहाँ देखें पत्र लाइव पत्रिका ने इसे छापा है जिसे वहाँ दीवार पर टांगा गया है। ये वही था जिसने यह कहा था, ये वही था उस रात को जब मैं उस सड़क पर जा रहा था और वो बड़ा मांबा सांप मेरे भाई की ओर पहुंचने वाला था, और उसने कहा तुमने दिया है, तुम्हें उसे बांधने की सामर्थ्य दी गई है या उसमें से बाकी किसी को भी। ये वही था जिसने यह कहा था, मेरी छोटी सफेद बाल वाली पत्नी वहाँ पीछे बैठी हुई है। ये उस सुबह वही था जिसने मुझे उस कमरे में वहाँ जगाया और कोने में खड़ा था, कहा कुछ भी करने के लिए डरो मत, यहाँ कहीं भी जाने के लिए या कुछ भी कहने के लिए, क्योंकि जहाँ कहीं भी तुम जाते हो, कहीं भी न हारने वाली यीशु मसीह की उपस्थिति तुम्हारे साथ है। यह लगभग तीन महीने पहले वहाँ उस ओर सबिनो कैनियन में वही था जब मैं प्रार्थना कर रहा था, सोच रहा था कि क्या होने जा रहा था। मैं वहाँ पर खड़ा हुआ था और एक तलवार मेरे हाथ में उतर आई और कहा यह राजा की तलवार है। यह वही था, ये वही था जिसने मुझसे कहा जैसा मैं मूसा के साथ था वैसे ही मैं तुम्हें भेजूंगा। ये वही था जिसने 30 वर्ष पहले मुझसे कहा वहाँ नदी पर, मैं एक छोटे से लड़के जितना ही था 30 वर्ष पहले नदी पर एक छोटे प्रचारक के रूप में वहाँ खड़ा हुआ था जब वो उजाला, वो अग्नि का एक स्तंभ जो आकाश से उतर कर वहाँ बना रहा, और कहा जैसा कि मैंने योना बपतिस्मा देने वाले को मसीह के आगे आगे भेजा था, तुम्हारा संदेश दूसरे आगमन से पहले आगे आगे जाएगा जो सारे संसार के लिए है। यह कैसे हो सकता है जब मेरा अपना पास्टर हंस पड़ा और इसका मजाक उड़ाया? लेकिन यह बिल्कुल ठीक उसी प्रकार से घटित हुआ, यह वही था जिसने इसे कहा था। जी हाँ श्रीमान, ओह किस तरह से, यह वही था जिसने भविष्यवाणी में कहा दर्शन के लिए ये पूरा होने जा रहा है। ये वही था जिसने कहा यदि तुम में से कोई भविष्यवाणी करता है या एक दर्शन को देखता है और इसे बताता है और यह पूरा होता है, तब याद रखना यह वो व्यक्ति नहीं है, यह तो मैं हूँ, मैं उसके साथ हूँ। ओह प्रभु, मैं आगे क्या कह सकता हूँ और कहता हूँ ये वही है, ये वही है, ये वही है, ये वही है जो नीचे उतर कर आया जब मैंने उनसे कहा कि वो अग्नि का स्तंभ वहाँ नदी पर था और वे इस पर विश्वास नहीं कर सके। ये वही था जो उनके बीच था जब बैप्टिस्ट प्रचारक इससे पहले उस रात 30,000 लोग जेम हॉस्टन कॉलेज में जब परमेश्वर के दूत ने अपनी तस्वीर को लेने दिया था जो वहाँ पर खड़ा था। ये वही था जो कल, आज और युगानुयुग एक सा है। ये वही था जिसने पहले से ही बताया था ये बातें कहाँ पर होंगी। ये वही था जिसने इसे कहा था। ये वही था जिसने इन चीजों को किया था। वो कल, आज और युगानुयुग एक सा है। उसने सब कुछ बिल्कुल ठीक उसी तरह से किया जैसे उसने कहा था कि वह इसे करेगा। आमीन। भला मुझे क्यों रुकना चाहिए? परमेश्वर ने वचन को प्रमाणित किया है, यही सच्चाई है। आइए यात्रा करते हैं, आइए आगे चलें, आइए प्रभु के कदम पर आगे बढ़े। सारे संदेह, सारे पाप को एक तरफ रखते हुए घर को साफ करें, इसे अच्छी तरह से धो लें, जैसे जूनियर जैक्सन के दर्शन या उसके सपने ने कहा वहाँ धूपदान के अलावा कुछ भी नहीं बचा था। यदि वे भाई यहाँ बैठे हुए हैं तो धूपदान के अलावा कुछ भी नहीं बचा था, और उनके चारों ओर सोने की पट्टियां थी उस स्वप्न में जिसे उन्होंने मुझे एक दिन बताया। ओह प्रभु, भाई कॉलिंस, उस मछली के बारे में चिंता मत करो, वो सफेद थी। आपने तब नहीं जाना कि इसे कैसे वर्णन करें। हर एक चीज को एक तरफ रखें जो इसके विपरीत है। याद रखें, यह सच्चाई है, भले ही यह कितना भी कभी कभी कट्टरपंथी दिखाई देता है और इत्यादि सारी चीजें इसके साथ आगे बढ़ें। यही पवित्र आत्मा है, वही परमेश्वर जिसने यीशु मसीह को मुर्दे में से जिलाया, वही वो एक है जो उन चीजों को बोलकर अस्तित्व में ला सकता है। वही वो एक है जो मूसा के दिनों में रहा था, आज भी वही है। इस अंतिम दिन में उसकी पुकार वह प्रमाणित है, जैसा कि ये सदोम के दिनों में था वैसे ही मनुष्य के पुत्र के आने पर होगा। उसने किया, वहाँ पर सदोम है, वहाँ एक बिली ग्राहम और एक और रॉबर्ट्स है, और कलीसिया उन्हीं चिन्हों के द्वारा आगे बढ़ रही है जिसकी उसने प्रतिज्ञा की, दोनों ही स्थान और वहाँ पर वे हैं। ये वही है जिसने इसे कहा, ओ प्रभु मुझे हिम्मत दीजिए, ये मेरी प्रार्थना है। हे प्रभु परमेश्वर, मेरी सहायता करें, मुझे यहाँ छोड़ना है, देर हो रही है। मेरे लिए क्यों दुहाई देता है तू? मेरे लिए क्यों दुहाई दे रहा है जब मैंने तुम्हारे साथ होने को साबित किया है? क्या मैंने तुम्हारी बीमारी को ठीक नहीं किया है? वो कहेगा, क्या मैंने तुम्हें उन चीजों को नहीं बताया है जो बिल्कुल ठीक उसी तरह से हुई? तुम्हारा पास्टर इसे नहीं कर सकता है, मैं वो नहीं कर सकता है, वो एक मनुष्य है। यह तो मैं हूँ, वो प्रभु, जो वो कहेगा, मैं ही वो एक हूँ जिसने ऐसा किया, मैं ही वो एक हूँ जिसने इन चीजों को उसे कहने के लिए कहता हूँ। ये वो नहीं है, ये मेरी आवाज है। मैं ही वो एक हूँ जिसने तुम्हारे मृतकों को उठाया है जब वे नीचे पड़े हुए थे। मैं ही वो एक हूँ जो बीमारों को ठीक करता है। मैं ही वो एक हूँ जो इन चीजों की भविष्यवाणी करता हूँ। मैं ही वो एक हूँ जो बचाता हूँ। मैं ही वो एक हूँ जो प्रतिज्ञा को देता हूँ। परमेश्वर ने मुझे उस वचन की तलवार को लेने की हिम्मत दी जिसे उसने मेरे हाथ में लगभग 33 वर्ष पहले रखा था, और इसे पकड़े रहूं और तीसरे खिंचाव की ओर आगे बढ़ूं, यह मेरी प्रार्थना है। आइए अपने सिरों को झुकाएंगे। स्वर्गीय पिता, समय बीतता जा रहा है लेकिन वचन बहुमूल्य होता जा रहा है। जैसा कि हम इसे देखते हैं प्रभु, समय दर समय ना चुकने वाली मसीह की उपस्थिति हमेशा हमारे साथ होती है। आपकी भलाई के लिए मैं आपको कैसे धन्यवाद दूं? किस तरह से आपने हमें बचाए रखा है और हमें आशीषित किया, हम इसके लिए आपका कैसे धन्यवाद करें? जैसे मैंने इन रुमालों को अपने हाथ में पकड़ा है प्रभु, ये वे लोग हैं जिनके पास विश्वास है, जो इसे भरोसा करते हैं। होने पाए हर एक शैतान, हर एक बीमारी उन लोगों को छोड़कर चली जाए, और मैं यहाँ हर एक आत्मा को आज्ञा देता हूँ जो घृणित है और परमेश्वर की नहीं है। हर एक बीमारी की आत्मा, हर एक रोग और पीड़ाएं, हम मनुष्य की छाया में नहीं पड़े हुए हैं जो कि सब ठीक करेगी, लेकिन हम सुसमाचार की छाया के नीचे हैं, प्रमाणित सुसमाचार की। जब अग्नि का महान स्तंभ इस इमारत के पीछे और आगे मंडरा रहा है, वही एक जिसे परमेश्वर ने इसमें से होते हुए देखा और लाल समुन्दर पीछे हटने लगा और इज़राइल वहाँ से पार हो गया, लेकिन अब जब वो देखता है दया और अनुग्रह के साथ ये उसके अपने पुत्र के लहू के साथ छिड़का गया है। होने पाए वे आज्ञाकारी बने रहे, होने पाए हम आज कहना छोड़ दें, दुहाई देता हूँ। हम जान जाएं कि आपने हमें इस काम को करने के लिए बुलाया है, यही वो घड़ी है। मैं इसे यीशु मसीह के नाम में बोलता हूँ, हर एक बीमारी इस जगह को छोड़कर चली जाए। होने पाए हर एक पुरुष और महिला जिसे यीशु मसीह के नाम पर बुलाया गया है, आज अपने जीवन को नए सिरे से समर्पित करें। मैं अपने जीवन को प्रार्थना की वेदी पर समर्पित करता हूं प्रभु। मैं खुद को एक तरफ रखता हूं और अपने खुद के लिए शर्मिंदा हूं और अपने सिर को धरती की ओर घुमाता हूं जहां पर से आपने मुझे उठाया था। प्रभु परमेश्वर, मैं अपनी कमजोरी और अपने अविश्वास से शर्मिंदा हूँ, इसे क्षमा करें प्रभु। मुझे हिम्मत दीजिए, हम सभी को हिम्मत दीजिए। मैं महसूस करता हूँ मूसा के जैसे हम सब हमारे मार्ग पर हैं, हम एक को भी नहीं छोड़ना चाहते हैं, हम हर एक को लेना चाहते हैं प्रभु, वे आपके हैं, मैं उन्हें आपके लिए दावा करता हूँ। आज इन लोगों को आशीष देना प्रभु, इसे प्रदान करें और उनके साथ साथ मुझे आशीष देना पिता। आपके नाम की प्रशंसा हो, आपकी महिमा उनकी होगी। हमें यह अनंत विश्वास दे प्रभु, जैसे हम अब खुद को आपके लिए समर्पित करते हैं। मैं इस बाइबल पर और इस पर बने रहकर मैं आपको अपने जीवन को देता हूँ प्रभु। मैं आपके द्वारा दिए गए हर एक प्रतिज्ञा पर निर्भर रहता हूँ। मैं जानता हूँ कि उनकी पुष्टि की जाएगी। मैं जानता हूँ कि वे सत्य हैं। मुझे इन शब्दों को बोलने के लिए हिम्मत देना, मुझे हिम्मत देना प्रभु। मुझे इसमें निर्देशित करना, मुझे क्या करना है और कहना है। मैं इस कलीसिया के साथ अपने आप को आपके लिए देता हूँ, इसके साथ साथ प्रभु यीशु मसीह के नाम में, आमीन। मेरा विश्वास आपकी ओर, तुझ कलवरी के मेमने, दैविक उद्धारकर्ता, अब मेरी सुनना जब मैं प्रार्थना करता हूँ। मेरे सारे पापों को दूर करें। ओ, मैं इस दिन से लेकर पूरी तरह से आपका रहूं। अब आइए हम खड़े हो जाएं शांतिपूर्वक जब हम इसे गुनगुनाते हैं। आपकी ओर, तुझ मेमने, आइए अब हम उसकी ओर अपने हाथ उठाएं। हे उद्धारकर्ता, अब परमेश्वर के लिए अपने आप को समर्पित करो। अब मेरी सुनना जब मैं प्रार्थना करता हूँ। मेरे सारे संदेह को दूर करें। ओ, मैं इस दिन से लेकर पूरी तरह से आपका रहूं। अब मिलकर हमारे हाथों को ऊपर उठाने के साथ, प्रभु यीशु, अब मैं खुद को समर्पित करता हूं। एक सेवा का जीवन और अधिक शुद्ध और अधिक विश्वास मैं पुकारता हूं, कि मैं अपने आने वाले जीवन में एक और अधिक स्वीकार योग्य सेवक बन सकूं, उससे अधिक जितना कि मैं बीते जीवन में रहा हूं। मेरे अविश्वास के लिए क्षमा करें और उस विश्वास को हमें लौटाएं जिसे एक बार संतों को दिया गया था। मैं अपने आप को यीशु मसीह के नाम में आपको देता हूं। अब जब हम अपने सिर झुकाते हैं, जबकि मैं जीवन के अंधेरी भूल भुलैया में चल रहा हूँ और मेरे चारों ओर दुख से घिरा हुआ, आप मेरा अगुवा बनिए। घोर अंधेरे को दिन में बदलें। मेरे सारे डर को दूर कर दें। न कभी मुझे भटकने दे, आपसे अलग होकर। जैसे हम अपने सिर को झुकाते हैं, क्या आप महसूस करते हैं कि सुबह का संदेश आपके लिए लाभजनक रहा है, आपको हिम्मत मिली है? यदि आप केवल अपने हाथों को परमेश्वर की ओर उठाएं, कहते हुए, परमेश्वर, मैं आपको धन्यवाद देता हूं। मैंने अपने दोनों हाथों को ऊपर उठाया है क्योंकि मैं बस ऐसा ही महसूस करता हूं। इससे मुझे मदद मिली है, ये मुझे हिम्मत देता है। कुछ बातें मैंने कही, मैंने नहीं सोचा कि मैं यह कहने जा रहा था, लेकिन यह पहले ही कहा जा चुका है। ये मेरे लिए एक ताड़ना थी। मैंने खुद को इस तरह से नहीं पाया है कि मैंने सोचा था जिसे मैंने किया, लेकिन शब्द को बोलने की बजाय मैं हर समय दुहाई देने के लिए खुद को दोषी पाता हूँ। परमेश्वर इस समय से आगे मेरी सहायता करे कि मैं एक और अधिक समर्पित सेवक बनूं। न ही केवल मैं अपने लिए प्रार्थना करता हूं, मैं आप लोगों के लिए भी प्रार्थना करता हूं कि एक साथ मिलकर मसीह के एक देह के रूप में संसार से बाहर बुलाए गए प्रतिज्ञा किए हुए देश के लिए तैयार हो रहे हैं, कि परमेश्वर मुझे उस तरह से बोलने के लिए हिम्मत देगा, रास्ते को साफ करे जिससे आप निशाने से न चूक जाएं। मैं बताऊंगा आप परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा मैं उसके लहू लुहान पद चिन्हों का अनुकरण करूंगा जो हमारे आगे आगे चला था। ओह इस पवित्र क्रूस को मैं सहन करूंगा जब तक मृत्यु मुझे स्वतंत्र नहीं करेगी और तब घर जाऊंगा एक ताज को पहनने के लिए, वह मेरे लिए एक ताज है। हम इसे आपको देते हैं पिता अपने समर्पण को आपके पुत्र यीशु मसीह के नाम में, आमीन। हम इसके लिए परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। एक समर्पित जीवन चले, मधुर नम्रता के लिए खुद को दे दो, आत्मा में चलो, मसीह के जैसे चले, बात करें, कपड़े पहने, व्यवहार करें, नम्र और मधुर। अब इसे चूकने मत देना। परमेश्वर की आवाज वचन के जरिए से बोलती है, उसके दानों के जरिए से बोलती है। जैसे एक दान आता है, दूसरा दान इसे व्यक्त करता है, एक और दान आता है और उसी चीज को व्यक्त करता है। देखिए, ये निश्चय ही ठीक वचन के साथ होता है और ठीक समय के साथ होता है। परमेश्वर हमारे साथ है, हम इसके लिए उसे कैसे धन्यवाद करें। अब यदि हमारे सिर झुकाएं, यदि हमारी बहन हमें इस पर स्वर को दे, अपने साथ यीशु के नाम को लें। एक ढाल की नाई हर एक जाल के लिए, और जब आपके चारों ओर परीक्षाएं घेरे हुए होती हैं, केवल प्रार्थना में उस पवित्र नाम की सांस लें। बस केवल इसे करें, शब्द को बोलें और उसके नाम को बोलें। अब आइए गाएं जैसे हम समाप्त करने जा रहे हैं। अपने साथ यीशु के नाम को लें। एक ढाल की नाई और दुख, यह आपको आनंद और ढांढस देगा। ओ इसे हर जगह ले जाओ, बहुमूल्य नाम। अब आइए एक दूसरे के साथ हाथ मिलाएं और कहें, मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा भाई, और आप मेरे लिए प्रार्थना करें। बहुमूल्य नाम, बहुमूल्य नाम, ओ कितना मधुर। धरती की आशा और आनंद। अब हमारे सिर को झुकाएं, आइए इस अगली पंक्ति को गाएंगे। अपने साथ यीशु के नाम को लें। एक ढाल की नाई हर एक जाल के लिए, और जब आपके चारों ओर परीक्षाएं घेरे हुए होती हैं, केवल प्रार्थना में उस पवित्र नाम की सांस लें। बहुमूल्य नाम, बहुमूल्य नाम, ओह कितना मधुर, ओह कितना मधुर। पृथ्वी की आशा और स्वर्ग की खुशी। बहुमूल्य नाम, ओह कितना मधुर। पृथ्वी की आशा और स्वर्ग की खुशी। हमारे सिर अब झुकाने के साथ और हमारे हृदय इसके साथ झुके हुए हैं, उस बात को एहसास करके कि यीशु ने कहा, वो जो मेरे वचन को सुनता है और उस पर विश्वास करता है जिसने मुझे भेजा है, उसके पास अनंत जीवन है, और वो न्याय में नहीं आएगा लेकिन मृत्यु से जीवन में पार हो चुका है। यह जानते हुए कि हम परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा हमारे पास जो हमारे हृदय में है, आज सुबह उसे समर्पण करने के साथ कि आज के बाद से हमारे जीवन बदल जाएंगे, जिससे हम अपनी सोच में और अधिक सकारात्मक होंगे। हम इस तरह से मधुरता और नम्रता में जीने की कोशिश करेंगे कि यह विश्वास करते हुए कि हम परमेश्वर से जो मांगते हैं, परमेश्वर इसे एक दूसरे को दे देगा, और हम एक दूसरे के विरोध में बुराई न करें या किसी मनुष्य की नहीं। हम अपने शत्रुओं के लिए प्रार्थना करेंगे और उनसे प्रेम करेंगे। उन लोगों के लिए भला करें जो हमारे लिए बुरा करते हैं। कौन सही है और कौन गलत है, इसका परमेश्वर न्यायी है। साथ ही इसके आधार पर और हमारे सिर झुके हुए हैं, मैं अपने अच्छे मित्र भाई लीवेल से पूछूंगा क्या वे प्रार्थना के कुछ शब्द से सभा को समाप्त करेंगे। बाय वेल।